ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 25। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्या मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिर्भिर्वृष्णमैडयन् सत्यव्रतं सत्यपरां त्रिसत्यां सत्यस्य योनिं निहितां च सत्ये। सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुर्दशः पञ्चविधः सदात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्ष दशच्छदि द्विखगो यादि वृक्ष। त्वमेक एवास सतः प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वाम् पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये बिभर्षि रूपाण्यवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानाम् त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् स्वयं समुत्तीर्जसु दुस्तरं द्युमाम् भवार्णवं भीममदभ्रसंहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय जाता सदनुग्रहो भवान् येन्ने रविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्णेण पदं पदं परं पदं ततः पतन्त्यधोनादृतजस्मदङ्घ्रयः तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदः त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भयः विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो ब्रह्मा श्री ब्रह्मा जी भवः भगवान शिव च और भी तत्र कंस के कारागृह में एत्या आकर मुनि भी मुनियों के साथ नारदादि भी जिनमें श्री नारद जी प्रधान थे ऐसे मुनियों के साथ देव ही इंद्रादि देवताओं के साथ स अनुचर ही और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि के साथ कंस के कारागृह में आकर गिर्भिः वेद वाक्यों से वृषणां समस्त मनोरथों की वर्षा करने वाले सब कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान की आईडयन स्तुति करने लगे। कल वर्णन हुआ था कंस कारागृह में जाकर देवकी का दर्शन किया, तो देवकी पहले से बहुत अधिक प्रसन्न थी और उसका तेज बढ़ा हुआ था। तो देवकी को इस आनंदमयी दशा में देखकर कंस से विश्वास कर लिया कि इसके गर्भ में विष्णु आ गया, तो वह स्वयं ही यह निश्चय किया कि मैं देवकी का वध नहीं करूंगा। बार बार ये विचार उसके मन में आ रहा था, एक तो स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है, तीसरे गर्भवती है, इसकी हत्या करने से मेरा जस चला जाएगा और मेरा धन मेरी श्री चली जाएगी तथा मेरी आयु भी नष्ट हो जाएगी। कभी कभी कोई कोई बड़ा पाप होता है तो उम्र को तत्काल माइनस कर काट देता है। मान लीजिए किसी को जीना है 10 वर्ष और, लेकिन अगर कोई महान पाप होता है बहुत भयानक तो बीच में ही उस कर्म का फल दे दिया जाता है। ऐसा होता नहीं है प्रायः, कर्म का फल तो बाद में भोगना पड़ता है, लेकिन कोई कोई काम ऐसा होता है कि तत्काल फल भोगा ले। तो कंस ये कह रहा है कि देवकी का वध करने पर मेरा जीवन इसी समय समाप्त हो जाएगा, ये माइनस कम हो जाएगा, अतः मैं देवकी का वध नहीं करूंगा। मैं अपने शत्रु के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जब गर्भ से बाहर आएगा तब मारूंगा, जिसे देवकी को कोई क्षति न हो। देवकी को नहीं मारेगा, देवकी के पुत्र को मारेगा। ये शुद्ध विचार होने पर तब ये बात आई। कंस अपने समझ से इसको बहुत हायर विचार मान रहा है, देवकी का वध करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देवकी के बच्चे का वध करने से जस बढ़ जाएगा। इतना मूर्ख था वह, भय करता था। जिस प्रभु से प्रेम करना चाहिए उनसे भय कर रहा है। अगर उसी समय देवकी के घर में जब भगवान आए हैं तो साष्टांग प्रणाम करके माता देवकी से कहता है कि अपने बेटा को सिखाना हमको न मारे, लेकिन ये विचार नहीं आया, उसको तो मारना ही है। और प्रतीक्षा करने लगा, सारा जगत उसे हृषिकेश मय दिखाई दे रहा था। हृषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, प्रत्येक इंद्रिय की वृत्तियों पर कृष्ण ही थे, विष्णु थे। कोई चीज सुनता था तो ऐसा ही भाव होता था कि विष्णु बोल रहा है मारे ना, कान में भी विष्णु, जीभ पर विष्णु, मन में विष्णु, हाथ में विष्णु, सब जगह विष्णु ही विष्णु। तो इस तरह से जन्माष्टमी की प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण जन्म की। और उधर एक भक्तों का समुदाय था जो भगवान को इस संसार में लाने के लिए, अवतार लेने के लिए बहुत प्रयास किए थे। क्षीर समुद्र के तट पर गए थे, उपवास करके कीर्तन किए थे, प्रार्थना किए थे, तो भगवान ने कहा था कि मैं आऊंगा। तो वह समुदाय अर्थात देवताओं का दल भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान जन्म लेंगे, हम उनका गुण गाएंगे, बाजा बजाएंगे, उनको अपनी सेवा अर्पित करेंगे, इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे बड़े प्रेम से। तो जब इस बात का पता लगा देवताओं को कि भगवान गर्भ में आ चुके हैं, तो देवता आए वहां। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ब्रह्मा भवश्च, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव। ये दोनों गए थे क्षीर समुद्र के तट पर। तो अब जब अपना प्रयास सफल हुआ है, भगवान जो वचन दिए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि मैं वसुदेव के यहां जन्म लूंगा, तो उसको पूरा कर दिए, आ गए मां देवकी के गर्भ में। तो इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और जुटे भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, बधाई देने के लिए। वो कंस के कारागृह में जुटे सब लोग, अलक्षित, वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ऐसे भी यहां भी देवता हैं, हम लोगों के इंद्रियों पर भी हैं, सब जगह हैं, लेकिन उनका ऐसा अधिकार है, स्वरूप है कि वो दिखाई नहीं पड़ सकते। बहुत शुद्ध भक्ति होने पर शिव जी के प्रति तब वो दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो ये सारे देवता सब जगह हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो अलक्षित रूप से कंस के कारागृह में आकर के वे सब देवता स्तुति करने लगे। किसकी? वृषणम। वृषणम का अर्थ है वर्षा करने वाले की स्तुति करने लगे। वर्षा करने वाले, यह वर्षा का अर्थ है समस्त कामनाओं की जो वर्षा करते हैं। भक्त जो जो चाहता है उसकी इच्छा को भगवान पूरा करते हैं, काम वर्षा करते हैं। काम का अर्थ है मनोरथ, इच्छा। तो सीधे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वृषणम, वर्षक, वर्षक करने वाले भगवान की स्तुति करने लगे। भक्तों को अनेक कामनाएं होती है तो भगवान कामनाओं की वर्षा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मांग रहा है कि हमको थोड़ा सा पानी चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए, तो भगवान पूरा बरसा ही देते हैं, भर देते हैं, पीते रहो खाते रहो, भक्त की इच्छा को पूरा कर देते हैं। दूसरे देवताओं में ये शक्ति नहीं है। अगर देवताओं से मांगा जाता है कि प्रसन्न देवता है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं, जाही जल जाचो कहे अमीय पियाऊ सो। हे प्रभु, हे श्री राम, मैं दूसरे देवता से जब मांगता हूं कि हमको पानी चाहिए, जाही जल जाचो, जल मांगता हूं, तो देवता कहता है कि ऐसा करो कि हमको अमृत पिला करके दो, लाओ तब हम पानी देंगे। पहले अमृत लेना चाहते हैं तब पानी देते हैं, तो जब अमृत ही हमको जुटाने की शक्ति रहेगी तो हम उनसे मांगने क्यों जाएंगे। यही संसार की रीति है वास्तव में सब जगह, जाही जल जाचो कहे अमीय पियाऊ सो। जिससे जल मांगने जाता हूं वो कहता है कि हमको अमृत पियाओ। ये क्या देगा वो? भगवान तो केवल भक्त मांगे, कुछ भी उनको न दे, फिर भी वे देते हैं। ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि केवल तुलसी दल अर्पित कर देने से, जल अर्पित कर देने से भगवान अपने आप को दे देते हैं आत्मद। कई ऐसी घटनाएं, जैसे सुदामा जी को भगवान ने दिया, लिया क्या, चार मुट्ठी चिवड़ा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान कृष्ण पर व्यंग किए हैं, व्यंग किए कहते हैं कि भगवान श्री राम अधिक दयालु। सुदामा जी को दिए कृष्ण तो चार मुट्ठी चिवड़ा लेकर के दिए, लेकिन विभीषण जी को भगवान ने राज दिया तो विभीषण जी लंका से कोई फल भी नहीं लाए थे, कुछ नहीं, केवल दंडवत किए और भगवान ने कहा लंका का राज्य तुम्हारा है। द्रौपदी को दिए भगवान, उनकी उसका चीर बढ़ाए, तो ऐसी घटना हुई थी कि राजसूय सभा में जब भगवान का भोग बन रहा था संतों के लिए प्रसाद, तो भगवान भी कोई आइटम बना रहे थे अलग, तो महाराज युधिष्ठिर का किचन था, कोई भी बना सकता था, तो साधु सेवा के लिए भगवान भी बना रहे थे, क्योंकि भगवान एक गृहस्थ थे वहां पर अपने पत्नियों के साथ। तो भगवान ने एक लीला किया, सब्जी काटने में भगवान के अंगुली में थोड़ा कट गया, उस शस्त्र काट नहीं सकता है उस चिन्मय शरीर को, लेकिन भगवान की लीला थी। तो वहां पर और कई लोग थे, पता चला, और बगल में स्त्रियां बना रही थी भोजन, जिसमें द्रौपदी जी थी और भगवान की पत्नियां भी। और ये हुआ कि हल्ला हो गया कि उंगली कट गई है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, चिकित्सा किया। तो वहां पहले कोई ये रोग किसी को होता तब न कोई फर्स्ट एड या कुछ रखा जाता है, कुछ था नहीं, और उस घर में चिथड़ा आदि मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, फटा कपड़ा नहीं। द्रौपदी ने देखा थोड़ा सा ब्लड बह रहा था, तो उसने अपनी बिल्कुल नवीन और बहुत कीमती साड़ी का छोर फाड़ करके तुरंत उंगली बांध दी, थोड़ा सा फाड़ करके काट करके और बांध दिए। महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान इतने कृतज्ञ हैं कि उसी वस्त्र के कारण उन्होंने करोड़ों मीटर वस्त्र बढ़ा दिया। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कुछ ले करके तब बढ़ाए। लेकिन भगवान श्री राम कई लोगों का उपकार किए बिना लिए किए, वे ऐसा व्यंग करते हैं, वे भगवान राम को ज्यादा दयालु मानते हैं। लेकिन कृष्ण तो परम ईश्वर हैं, उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं। पूतना क्या लेकर के गई थी भगवान के पास, हाँ वो भी कुछ लेकर के गई थी, 20 लेकर के गई, दूध पिलाने गई थी। वास्तव में भगवान इतने कृपालु हैं, तो भक्तों के मनोरथों को पूरा कर देते हैं, और वर्षा करके देते हैं। भगवान देते हैं तो छप्पर फार करके देते हैं, उनका स्वभाव है, उनको कोई कमी है नहीं। बल्कि वे कभी कभी याचक नहीं आते हैं तो भगवान बड़ा निराश होते हैं, कोई आया नहीं। देने के लिए उत्सुक रहते हैं, कोई आवे और मांगे, उनको अभिमुख कर, हमेशा ऐसे मूड के रहते, कोई आवे और मांगे। तो इनके भक्त ब्रह्मा जी और तो साक्षात पुत्र ही हैं, और भगवान शिव जो उनके स्वरूप हैं, ये सब आए कारागृह में। श्री नारद जी आए, नारद जी पहले आए सब मुनियों के साथ, क्योंकि भगवान के अवतार में नारद जी का बहुत प्लान था। वास्तव में नारद जी ही सब मास्टर प्लान किए थे अवतार के लिए, इधर जाना, कंस को ये कहना, उसको ये कहना, उधर स्वर्ग लोक से देवताओं के मीटिंग से कंस के पास आना, कंस क्या कर रहा है इसको जाकर देवताओं को सुनाना, जरे करना। वो चाहते थे कि भगवान का अवतार हो। जब अवतार होने का समय आ गया तो श्री नारद जी को बहुत खुशी हुई। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी शरार्थ दर्शनी में लिखा है कि जब घनश्याम माता देवकी के उदर रूपी आसमान में छा गए, जैसे मान लीजिए गर्मी का दिन चल रहा है और बरसात का मौसम आवे और बादल घना घना छा जाए तो उसको घनश्याम कहें। घन का अर्थ है बादल, श्याम माने काला, बादल छा जाते हैं तो किसको किसको प्रसन्नता होती है सबसे अधिक? वर्षा जब करे मेघ है तो बहुत प्रसन्नता होगी, तो यह घनश्याम अब लीलामृत की वर्षा करेगा। और चालू कहां से करेगा? मथुरा के कारागृह से, ब्रज में। ब्रज में लीलामृत की वर्षा, मथुरा में वर्षा, द्वारका में वर्षा, कुरुक्षेत्र में वर्षा, और सब जगह तीनों लोक में वर्षा होगी। यही याद कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, अब तो घनश्याम छा गया, आ गया, तो वर्षा होगी, भक्तों को सुख मिलेगा, भक्तों का मनोरथ पूरा होगा। जो भक्त तड़प रहे थे वर्षों से कि कब भगवान को आंख भरकर देखेंगे, अब वो समय आ गया कि उनको देखेंगे और लीलामृत गाएंगे, सुनेंगे। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा काल में बादल छाते हैं तो मयूर नाचने लगते हैं, मयूर नाचने लगते हैं, तो यहां पर श्री भगवान को, शिव जी को सुखदेव गोस्वामी मयूर कह रहे हैं। वे नाचने में बहुत परिणत हैं, नटराज हैं। तो भगवान के अवतार की बात जान करके भी बहुत खुशी में थे तो शिव रूपी मयूर नाचने लगा, अपना पंख फैला फैला कर। पांडव नृत्य करते हैं, नाचने में बहुत तेज है, दो ही लोग तो नाचते हैं खूब, एक नटवर और एक नटराज। लेकिन नटराज जो नाचते हैं तो इतना भयावह नाच करते हैं कि प्रलय के समय नाचते हैं, अथवा भगवान के कीर्तन में भी नाचते हैं, ये पद्म पुराण में लिखा गया, और अपने हाथ में डमरू ले करके और नाचते हैं, बहुत सुंदर नृत्य करते हैं भगवान से। और उस कीर्तन में भगवान कृष्ण भी थे, जब कथा कहे सुनका दिख, और श्रोता नारद जी थे गंगा जी के तट पर हरिद्वार में, वही आनंद कानन, आनंद बन, वही क्षेत्र था, पहला भागवत वहां हुआ। तो कह रहे हैं उस कथा में सुत गोस्वामी कि भगवान कृष्ण नाच रहे थे, श्री सुखदेव गोस्वामी नाच रहे थे, श्री नारद जी वीणा बजा बजा कर नाच रहे थे, भगवान शिव भी मधुर गति से नाच रहे थे, सुनकादिक सब नाच रहे थे। ये कीर्तन कोई नई चीज नहीं है, ये सनातन परंपरा है, भगवान का नाम गाना, नाचना। तो शिव जी मयूर की तरह नाचने लगे घनश्याम के आने पर, जब आकाश में छाया, और श्री नारद आदि मुनि ये क्या है? चक्रवर्ती पाजी कहते हैं चातक पक्षी हैं। चातक पक्षी रटता रहता है कब बादल छाएगा, स्वाति का बादल और बूंद हमारे कंठ में आएगा। तो ये भक्त सब प्यासे रहते हैं, भगवान को देखने का अवसर नहीं मिलता है, तो अभी देखेंगे और भगवान लीलामृत की वर्षा करेंगे, उसको श्री नारद आदि मुनि वीणा पर गा गा करके धन्य हो जाएंगे। श्री नारद जी कभी मथुरा द्वारका में रहते थे तो वृंदावन आते थे, लीला देखने के लिए रोज आते थे, और लीला जो देखते थे जा करके अपने पिता के यहां बड़ा समाज रहता था, खूब गाते थे, वर्णन करते थे, आज ये लीला हुई ये लीला हुई। तो श्री नारद जी चातक पक्षी की तरह है, और ब्रह्मा जी उस किसान की तरह है जिसकी खेती सूख रही थी, फसल बोया था लेकिन खेती मुरझा रही थी। इस चतुर्दश भुवन के, इस ब्रह्मांड के किसान हैं ब्रह्मा जी। सब जीव दुखी थे, ते चाहते थे कि घनश्याम आवे और वर्षा करे, तब वर्षा करेगा, अब एक भी फसल मरेगी नहीं, सब लहलहाएंगे। तो ब्रह्मा जी किसान हैं, भगवान शिव मयूर पक्षी हैं, और श्री नारद जी चातक। इन सब के साथ ब्रह्मा जी और शिव जी देवताओं और गंधर्वों के साथ, यह अनुचर ही लिखा गया, अनुचर का देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि, इनके साथ आए कंस के कारागृह में और स्तुति करने लगे। क्या कहने लगे भगवान के विषय में? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गिर भी गिह, गिह का अर्थ होता है वेदवाणी, वेदवाणी पहले से ही भगवान के गुण सब लिखे गए हैं, कोई नया कविता गाने की जरूरत नहीं है। आजकल के लोग अपना जोड़ करके गाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते, निज कवित कही लागिन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस रखते समय, भाई मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, मैं भगवान राम का गुण गा रहा हूं, तो वैसे भी हमको अपनी कविता अच्छी लगती है, हमको तो अच्छा लग ही रहा है कि रामायण मैं अच्छा बनाया हूं, भगवान का गुण गाया हूं, भले दूसरे को फीका लगे। देखा ही जाता है कि निज कवित कही लागी नन्नी का, अपना कवित अपना भाषण किसको अच्छा नहीं लगता है? अपना गीत गाया है, कोई गा रहा है गीत, तो एक गायक कभी नहीं सोचता है कि दूसरा गायक हमसे बेटर गाता है, हाँ है ना। कोई भी गायक सोचता है कि नारद जी और सरस्वती जी के बाद मेरा ही नंबर। और अपनी कविता हो, कोई रचना ग्रंथ आदि, तो उसको आदमी सुनाना चाहता है। कई बार ऐसे देखा गया है, ग्रंथ रच करके लोग लाते हैं सुनाते हैं, और गीता नहीं पढ़ते हैं, भागवत नहीं पढ़ेंगे, अपनी कोई कविता लाकर सुनाते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास भी कुछ लोग लाते थे कविता करके संस्कृत में सुनाने के लिए, सुनाने। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो नियम बना दिए थे कि स्वरूप दामोदर जी पास करेंगे कि मेरे सुनने लायक है, तब तो सुनूंगा नहीं तुम्हें, उनकी रसाभास है यदि सिद्धांत विरोध, सुनी ते न पारे प्रभु मने उठे क्रोध। विरुद्ध किताब या गीत सुनकर के उनको क्रोध आता था। ये नहीं कि मान लीजिए अच्छा गा दिया गया इसी से वो ठीक है, नहीं, किसकी रचना है पहले विचार किया जाता है, किसकी रचना है और रचना में उसने क्या लिखा है, बहुत छांट करके तब गाना चाहिए, सुनना चाहिए। देवता लोग आए हैं, ये कविता नहीं बना सकते थे क्या? नारद जी आंसू कवि हैं, वे चलते हैं गाते हुए किसी भी विषय पर, तो भगवान के विषय में बोलना होता तो ब्रह्मा जी शिव जी अपनी कविता नहीं रच सकते थे, लेकिन गिर भी वेद वाणी से पहले से ही भगवान के बारे में जो कहा गया है उन्हीं श्लोकों से गाने लगे। हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय समाज बनाए, शाम सुबह आरती पूजा की व्यवस्था किए, कीर्तन की, अपना एक लाइन भी उसमें रखे हैं। ब्रह्मा जी का जो पद है ब्रह्म संहिता में उसको रखे, वेणुम क्वणम तमर बिंद दलायताक्षम बरहावतं समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सौभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम। यह है वेदवाणी, ये वेदवाणी है, इसको प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया, पूर्व के आचार्यों ने, और सभी भगवान का पट खुलता है, भगवान का दर्शन करते हैं तो ये गाते हैं। ये नहीं है कि मैया मेरा ब्याह करा दो, ये करो, ये वेदवाणी है। भगवान की बात जो ऋषियों ने गाया है उसको गाना चाहिए, ये अपना कर्तव्य है, नहीं तो आदमी तुरंत पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो भगवान की के बारे में रचना एक तो प्रामाणिक आचार्यों की होनी चाहिए और दूसरा बात भी उसमें आना चाहिए जो सबके लिए हितप्रद हो, कल्याण करने वाली। तो ब्रह्मा जी शिव जी और श्री नारद जी आदि सब वेद के स्तुति से भगवान की स्तुति करने लगे, पहले की ही स्तुति है। भगवान का गुण हम क्या गाएंगे, हम क्या उनका अनुमान करेंगे, उनके विषय में प्रमाण है, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ये सब वेदवाणी है। इसलिए आधुनिक कविताओं से बचना चाहिए, अर्वाचीन जो भी कविताएं हैं जो भी है से बचना चाहिए, और भाषण से भी बचना चाहिए। अगर गीता का भागवत का ठीक ठीक प्रवचन नहीं हो रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर ये आधार है तो ठीक है, किसी भाषा में आदमी कर सकता है प्रवचन, लेकिन बातें ये आनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी भगवान शिव आदि स्तुति कर रहे, मैं श्रील प्रभुपाद जी का विचार बोल रहा, वे ये बात कहे हैं। तो वे कहते हैं कि वेदों से ही, शास्त्रों से ही भगवान के बारे में बोलना चाहिए, तो बोलने लगे, सभी देवता बोल रहे हैं, इसीलिए आप सब भक्त बोलिए जिनके पास ग्रंथ है। सत्या व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किए, अपने संकल्प को जो उन्होंने कहा था कि मैं अवतार लूंगा वसुदेव जी के यहां, तो भगवान ने वो पूरा किया। तो भगवान के वचन को पूरा जान करके भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को सत्य किया, इससे प्रसन्न होकर के देवता गण देवलोग पहले सत्य के रूप में ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्य व्रतम बड़ा ही सुंदर श्लोक, बड़े ही सुंदर श्लोक है इस स्तुति में और बिल्कुल सरल है। क्या देवता कह रहे हैं उसको समझना चाहिए। इसमें श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, प्रतिश्रुतम सत्यम कृतम, भगवान ने अपनी प्रतिश्रुति को, प्रतिज्ञा को सत्य कर दिया, इस कारण से हृष्टा देवगण बड़े प्रसन्न हैं और सत्यत्वेन एव प्रथमम् स्तुवन्ति, भगवान को सत्य के रूप में स्तुति कर रहे हैं। सत्य व्रतम ये पहला शब्द है, द्वितीय में है और बाद में है शरणम प्रपन्ना, हे प्रभो आपका व्रत आपका संकल्प सदा सत्य होता है, ऐसे प्रभु के शरण में हम सब आए हैं। शरणम का अर्थ है शरण में, और प्रपन्ना का अर्थ है कि आए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। कौन किसकी शरण में आए हैं? जो मुक्त हैं, देवता बड़े पदों पर मुक्त हैं, वे गर्भ में पड़े हुए बच्चे की शरण ले रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, किसकी कौन शरण ले रहा है? गर्भ में जो बच्चा होता है, भगवान को छोड़ करके विचार कीजिए, वो बेचारा सजा भोग रहा है। कोई जीव सीध नीचे रहता है, और कहीं अगर शरीर में कोई कीड़ा काटा कुछ किया तो खुजला भी नहीं सकता है। जैसे हाथ है, जैसे पैर है, जैसे सिर है, बस ऐसे खाने की व्यवस्था नाल को बढ़ा करके भगवान करते हैं, वो नाल से खाता रहता है, मां के छोटी आंत और अमाशय के बीच में वो चिपक जाता है नाल, और वहां से मां जो खाती है उससे खाता है। पूरे गर्भ में कभी मुंह नहीं चलाया, पानी पीने का कोई सवाल नहीं। और कोई पेय, आजकल का जो पेय शीशियों में बंद है, तो सोचा भी नहीं कर। जैसे वृक्ष खाता है धरती से, वैसे मां के भोजन को नाल से खींच खींच करके यहां से खाता है। 5 महीने का 6 महीने का होता है तो भूख लगती है, तो इतने महीनों तक, लगभग 9.5-10 महीने, कितना होगा, 5 महीने का जब होता है तब भूख प्यास लगती है। खाता कहां से है? नाल से। हम लोग नाभि से खा करके आए हैं, पेड़ जैसा है, पेड़ को पादप कहते हैं, पैर से जो पिए, पादे न पियत पीवती थी पादप। तो हम लोग भी पेड़ जैसे नाल से खा करके आए, ये दशा होती है। मेरे कहने का अर्थ है कि गर्भवास एक विवश दशा है, और उस समय कोई बाहरी आदमी कहे कि मैं आपकी शरण में हूं, वो बच्चा तो जाने का भी नहीं कि कौन शरण में है नहीं है, और शरण में हो भी जाए कोई तो वो क्या करेगा, या गर्भ से निकल करके और बंदूक लेकर चलाएगा किसी पर? कौन शरण ले रहा है? विचार करना चाहिए भागवत के शब्द पर ध्यान से। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्रदेव, श्री नारद जी और सनकादि और बड़े बड़े वरुण, कुबेर आदि देवता आकर के कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए। शरणम प्रपन्ना। कृष्ण क्या है अगर इसको जानना हो तो भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, पढ़ करके समझ में न आवे तो अभिज्ञ से सुनना चाहिए क्या कहा जा रहा है। ब्रह्मा जी, शिव जी सब कृष्ण के सेवक हैं, ये बात स्पष्ट हुई ना? और भगवान चाहे कहीं भी रहे, चाहे वैकुंठ में रहे, निकुंज में रहे, चाहे किसी के गर्भ में रहे, भगवान भगवान है। एक श्लोक में कहा गया है कि जैसे गरुण जी अगर सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठे तो गरुण जी हैं, लेकिन उसके नीचे बिल्कुल बैठे तब भी गरुण जी हैं, पर कौआ यदि संजोग से सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठे तब भी कौआ ही है ना? उसका स्थान बदलने से कोई अंतर नहीं हो जाएगा। तो भगवान गर्भ में हो, चाहे स्वर्ग में हो, वैकुंठ में हो, या कभी वे पापियों को देखने के लिए नरक में चले जाएं, फिर भी भगवान भगवान ही है। और जो मुक्त जीव हैं, बाहर हैं, कर्म बंधन से वे भी परे हैं, वे सब आकर के गर्भ में पड़े हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो इससे यह निश्चित होता है कि कृष्ण किसी भी दशा में नित्य मुक्त हैं, देवताओं के आराध्य हैं, भले वे किसी भी स्थान पर कोई भी लीला कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान का गुण गाते हैं, सत्य व्रतम, हे प्रभु आपका संकल्प सदा सत्य होता है। व्रत माने संकल्प, आपने जो सोचा वो हो गया, होता है। मनुष्य जो सोचता है वो सदा हो नहीं पाता है, जो संकल्प करता है। मैन पर्पसेज गॉड डिस्पर्स, मनुष्य मनोरथ करता रहता है, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, और तब तक कुछ ही वर्ष में सुना जाता है कि वो चला गया। बेचारा क्या क्या मनोरथ करता है कि ये करूंगा ये करूंगा, तब तक वो मसमसान, अब वहां मनोरथ क्या करेगा। एक संकल्प भी पूरा नहीं हो पाता है। और भगवान के संकल्प में और क्रिया में भेद नहीं है, संकल्प सोचना और होना दोनों एक साथ होता है, एक साथ। संकल्प व्रत, किस तरह से व्रत पूरा किए, होते होते देवकी पर संकट आया, क्या क्या आया, लेकिन वो कोई काम नहीं किया, अंततः भगवान अब आ ही गए। सत्य व्रत, व्रत का एक अर्थ होता है जो वाल्मीकि रामायण में भगवान ने कहा है कि सकृत देव प्रपन्नो यस तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मय ददामि तद् व्रतम मम। इस श्लोक पर जीव गोस्वामी जी इस श्लोक की व्याख्या में कोट किए, भगवान का व्रत है, जो कोई एक बार भी उनकी शरण में आकर के कह दे कि हे श्री राम मैं आपका हूं, तो मैं सदा के लिए उसको अभय कर देता हूं, जमराज से, कर्मबंधन से, सब और से सुखी कर देता, एक बार कह देता, हमारे शरण में आकर के और एक बार कह दे कि हे श्री राम मैं आपका हूं, तो मैं उसे अपना बना ही लेता हूं। ये भगवान का व्रत है। इस श्लोक की चर्चा टीकाओं में सब जगह है। भगवान अपने से कहते मेरा व्रत है, जैसे कोई व्रत करता है तो व्रत सफल हो फेल ना हो वो केयर करता है। जैसे एकादशी को अन्न खा ले या और कोई व्रत होता है, वैसे भगवान इस व्रत की चिंता करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि भक्त की उपेक्षा कर दे। कभी कभी भक्त को भी ऐसा लगता है कि भगवान हम पर ध्यान नहीं दे, है ना, कभी कभी निराशा होती है, लेकिन यह उस भक्त का ज्ञान है। भगवान अपना व्रत क्यों तोड़ेंगे। एक श्लोक में कहा गया है कि भगवान तो विश्वम्भर हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, तो फिर भक्त का क्यों नहीं करेंगे, विश्व का करते ही हैं, सबका कर रहे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्यों में भी कितने कितने लोग हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, सबको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, सबका चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। तो फिर भक्तन की उपेक्षा, भक्तों की क्या क्यों उपेक्षा करेंगे। और उनका स्टाइल है, देर थोड़ा करते हैं लेकिन वो तो करते ही हैं पूरा, उनका व्रत पूरा होता है। सत्य व्रतम, सत्य परम, और दूसरा विशेषण है सत्यम परम श्रेष्ठम प्राप्ति साधनम जस्मिन। भगवान को पाने के लिए साधन क्या है, सत्य। सत्य को पाने के लिए सत्य ही साधन है। सत्य साधन क्या है, सत्य साधन है भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की कथा, ये सब सत्य साधन है। और साधन कोई जरूरी नहीं है कि वे स्थिर फल दे सके, न तो पूरा फल देंगे और न तो जीव को ठीक से लीड करें ले जाए। जो भी साधन है, योग या कर्म ज्ञान, ये भी साधन हैं, ये सत्य नहीं है, पूरा फल नहीं देते। कोई कोई तो साधन ऐसा है कि बीच में ही दुर्घटना हो सकती है, बल्कि वो नहीं किया होता तो अच्छा होता। जैसे कोई आदमी कार पर जा रहा है, कार से ही दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो बेटर था कि कार से नहीं गया होता, है ना। कुछ ऐसे साधन हैं जैसे कर्म है, बहुत बहुत कर्म करना, वर्णाश्रम धर्म, आश्रम के धर्म और वर्ण के धर्म का पालन करना, पर भक्ति न करना, और कोई कोई ज्ञान में रहते हैं, बहुत उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, बहुत प्रवचन करते हैं, स्त्री से अनासक्त, पुत्र से अनासक्त, समाज से कुछ नहीं लेना, बिल्कुल विरक्त होते हैं। और कुछ होते हैं बहुत भारी तपस्या करते हैं, बहुत दिनों तक खाते नहीं हैं, वर्षों तक, कभी खाए भी तो डूब खाए, जैसे दुर्वासा जी। फिर भी क्या हुआ, इस तपस्या से ही उनका नाश एक प्रकार से हो गया। वे महाराज अम्बरीश पर अपना जोर आजमाने लगे, उसमें एक साल तक सुदर्शन की ज्वाला से जलाए गए। तपस्या नहीं किए होते तो अम्बरीश के प्रति क्रोध नहीं आया होता, वो सोचते थे मैं ब्रह्मचारी हूं, इतना बड़ा तपस्वी हूं, और ये अधम गृहस्थ हमारे भोजन करने के पहले खा लिया, मुझ अतिथि को, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को पहले नहीं दिया, खाए क्या थे, केवल भगवान का चरणोदक पिए थे थोड़ा सा व्रत पूरा करने के लिए। लेकिन दुर्वासा जी में ये दुर्विचार क्यों आया, साधन करने के कारण, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ये हूं, तो बल्कि नहीं किए होते तो ठीक रहता, साधारण आदमी थोड़े जो अम्बरीश महाराज पर ऐसे कृत्या उत्पन्न करेगा, न कृत्या उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं रहेगी, और इतनी भारी तपस्या किए थे कृत्या उत्पन्न करने। महाभारत में कथा है, कौन ऋषि थे नहीं आ रहा है, तो एक बार खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते केस नहीं बनाया जाएगा तो बाल बढ़ ही जाएगा, है कि नहीं, और बाल में कंघी नहीं किया जाएगा तो जटा बनेगा, तो बाल छोड़ दिए, ऐसे खड़े रहे कई वर्षों तक, तो केस बढ़ करके पूरा झमाट हो गया। तो उसमें एक पक्षी का जोड़ा आए, बैठने लगे, बैठते बैठते वो लोग उसी खोता में नीड में रहने लगे, जटक आते आते कालांतर में भी अंडा दिए, अंडा का सेवन किया, अंडा भी फूट गए, और ऋषि खड़े थे इस तपस्या में। अंत में अंडा फूट गया, बच्चे भी उड़ गए, सब हो गया। तो एक बार किसी से बात हो रही है, उनके किसी साथी से, तो अपनी उपलब्धि का वर्णन करने लगे, मैं इतना निश्चिंत खड़ा था, हाथ ऊपर किए था तो एक पेड़ की शाखा जैसे इसको हिलाया भी नहीं, मेरे बाल बढ़ गए, तो उसमें पक्षी निवास किए और अंडा दिए और बच्चे भी उड़ गए, अपनी तपस्या की सफलता बता रहे थे, महाभारत में कथा। तो उस तपस्या का वे एक बार प्रदर्शन कर रहे थे कि देखो मेरी तपस्या, मुझे तपस्या करने से मेरी आंखों में कैसी शक्ति आ गई है। तो एक बाज पक्षी को देखे आकाश में, उनके दृष्टि पड़ते ही बाज पक्षी मर करके गिर गया, दृष्टि पड़ते, तब उनके एक साधु साथी ऋषि बता रहे हैं कि तुमने किए क्या किया, इस तपस्या में क्या दम है, इतना अभिमान, अब बाल बढ़ जाए तो इसका अभिमान कि हमारी जटा तो भूमि तक लेटती है। एक साधु थे, दिखा रहे थे हम लोग, कभी कभी खोलते थे जटा, तो हमारे संबंधी भी थे, तो जमीन पर लगभग एक हाथ जटा इतना बड़ी थी कि लटक करके जमीन पर चल जाती थी, वो फलाहारी थे, अन्न कभी नहीं था, तो जहां जाते थे तो फलाहार उसने ऐसा खिलाया, ऐसे पवाया, ये पवाया, वो काजू लाया, किशमिश लाया, ये पवाया, यही कथा उनकी रहती थी। राम असरे से एक उनका स्लोगन था, बीच बीच में बोलते थे राम असरे से, राम असरे से, मतलब भगवान की कृपा से, राम असरे से मैं वहां गया तो वो पाया, और राम आश्रय से जब मैं ट्रेन से उतरा तो डोल डाल गया, ये भी कभी कभी वर्णन कर एक बार खूब वर्णन कर रहे थे तो उनके बड़े भाई आए थे हमारे गांव में, तो बड़े भाई नब्बे वर्ष के थे कि 94 वर्ष के, ऐसे बड़े भाई, और ये छोटे भाई थे बाबा रमानंदी थे। इनसे हमारे गांव में कोई व्यक्ति पूछे, हम लोग तो छोटे छोटे उस समय थे, लेकिन बाबा राउर उम्र का होती है, मतलब उनसे पूछा गया आपकी उम्र क्या होती होगी। उम्र इस समय 104 चल रहा है, 104 वर्ष की उम्र है। तो हम लोग तो मान ही लिए, सब लोग मानते थे बाबा 104 साल के हैं, 104 साल के हैं। तो जब बड़े भाई उनके आए और पूछा गया आपकी उम्र, हमें उम्मीद है कि वो 92 या 94 वर्ष बताए बड़े भाई। तो जब ये भेद खुला, बाबा जब आए बोले कहा, तो सब लड़के हंस रहे थे, कह रहे थे छोटे भाई 104 वर्ष के, बड़े भाई 94 वर्ष के, ये कौन गणित है भैया। खूब क्रोधित होते थे, तुम लोग जानते हो वो झूठ बोला। अरे भाई झूठ कितना बोलेगा, मान लीजिए आप छोटे भाई हैं तो हो सकता है 93 वर्ष के, लेकिन 104 वर्ष, ये कहने की परंपरा एक चल जाती है। एक बार मैं गया था कुंभ मेला में, तो झूसी गया, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी थे वहां, तो बड़े विनोदी थे, बड़े मजाक करते। तो देवराहा बाबा के विषय में बातें बहुत होती रहती थी कि बाबा 350 साल के हैं, कोई कहता था 200 साल के हैं, कोई 1 साल के, कोई 1.5 साल के, ऐसे लोग कहा करते थे। तो हम लोग बैठे थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पास, तो एक व्यक्ति ने पूछ दिया उनसे, महाराज, उनको महाराज कहते थे, ये देवराहा बाबा की उम्र कितनी है। ये बड़े मजाकी थे, वो कहे देवराहा बाबा, उनको मैं 400 साल से ऐसे ही देखता हूं। तो अब उसका प्रमाण था कि वो चाहे जितना साल का हो, मैं तो 400 साल का हूं। चार सौ साल से ऐसे ही देखता है, अब पता नहीं कितना और पहले के हैं। तो वो विनोद कर रहे थे इस तरह से। कभी कभी साधुओं में तपस्या के कारण और सबके कारण बहुत अहंकार आ जाता है, ज्ञान के कारण, मुझे ये ज्ञान है, मुझे ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। लेकिन इन सब साधनों से भगवान को नहीं पाया जा सकता, ये सत्य साधन नहीं है। सत्य साधन क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना, भगवान का नाम सत्य है, सभी लोग जान रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हे प्रभु, आपको भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है, ये अर्थ है। सत्य परम का अर्थ है भक्ति से ही आप प्राप्त हैं, क्योंकि भगवान का नाम सत्य है, भगवान का गुण सत्य है, उनकी लीला सत्य है और वे सत्य है। तो ऐसे प्रभु की शरण में हम लोग हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, और आप त्रिसत्य हैं, त्रिकार से त्रिशु कालेशु सत्यम अव्यभिचारेण अस्थितम। जितना समय अनादि काल से है जिसको हम लोग बीता हुआ कह सकते हैं, लेकिन कब से टाइम है, बिगिनिंगलेस टाइम है, अनादि काल से भगवान हैं, इस समय भी हैं और आगे भी वे रहेंगे। कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि भगवान का होना बंद हो जाएगा, मतलब उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं आएगा। तीनों काल में सत्य है, और सत्य का अर्थ होता है अव्यभिचारी सत्य, व्यभिचार का अर्थ होता है बदलना, परिवर्तन हो जाना। हम लोग भी रहेंगे, भगवान गीता में कहते हैं कि हम भी ये कुरुक्षेत्र में जुटे हुए राजा लोग पहले थे, हैं और बाद में भी रहेंगे। ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि नहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे पर व्यभिचारी रूप में, शरीर बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, योनि बदल जाएगी, सब कुछ, रहने से क्या हो। लेकिन भगवान हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इसको सत्य कहते हैं। तो उसी को आगे के श्लोक में कहते हैं, तीनों काल में सत्य हैं। अब मनुष्यों पर विचार कीजिए, क्या तीनों काल में रहेंगे? बहुत पहले से हैं, अनादि काल से अनंत काल तक रहेंगे, इस समय भी। बहुत पहले पता ही नहीं था कि ये कहां था, कहां जन्म हुआ था, किसी का पता है? किसी बड़े व्यक्ति का इस बार ये हुआ, ये हुआ, इतना बड़ा पद है, तो इसके पहले किस जोनी में था, बिल्ली था कि कुत्ता था कि पेड़ था, कुछ पता ही नहीं। पर थे, पर इस रूप में परिवर्तनशील शरीर में, परिवर्तनशील मन में, और क्या खान पान था, क्या भावना थी, क्या पोजीशन था, सब बदल जाता है। इस जीवन में भी कुछ ही काल के बाद पद बदल जाता है, शरीर बदल जाता है। पद कितना अस्थायी है कि यहां जो मैक्सिमम पद है किसी का, मनुष्यों के समाज में जो व्यवस्था है, 5 साल, 5 साल। तो कोई व्यक्ति अगर 5 साल से ज्यादा रह जाता है, 10 साल, तो और ज्यादा उसको गर्व होता है कि मैं तो 10 साल से। पर 10 साल के पहले तो नहीं थे ना, और 10 साल के बाद फिर नहीं रहोगे उस पद पर। पद की बात छोड़ दीजिए, इस शरीर में ही नहीं रहेगा जीव, कुछ साल के बाद शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर में रहेगा भी तो बूढ़ा होना पड़ेगा। लेकिन भगवान अनादि काल के हैं और वैसे ही नव जौवनम च, उनका बांसुरी बजाना, रासलीला करना, गोचारण, सब अनंत काल तक चलेगा, अनादि काल से हो रहा है। ऐसा कहीं सुने हैं कि भगवान बीमार पड़ गए और उनका ऑपरेशन हुआ कहीं? लेकिन यहां तो मनुष्यों का ऑपरेशन होता है, काट छाट होता है, शरीर में काट दिया जाता है। किसी किसी के शरीर पर बड़ा जब लकीर होता है तो आदमी कभी कभी दिखाता है, कभी देखिए हमारा ऑपरेशन हुआ है, और बड़े गर्व से बोलता है कि हमारा बाईपास ऑपरेशन। भगवान के शरीर पर कभी भी कोई खर्च नहीं, उनके शरीर पर क्या है, भृगु जी का चरण चिन्ह उन्होंने स्वीकार किया, और लक्ष्मी जी के रहने का स्थान श्रीवत्स। इसके अलावा शरीर में कहीं कोई कटा छटा नहीं। शिव जी के शरीर पर है थोड़ा सा दाग, जहर पिए थे तो कंठ बिल्कुल काला हो गया है, उनके लिए वो आभूषण ही है, लेकिन फिर भी ये है। पर भगवान का जो स्वरूप है वो अद्भुत, अनादि काल के हैं और केश एक भी नहीं पका, कभी नहीं, न तो पकेगा, और न तो उनको रोज छौर की और शेविंग की जरूरत है कि दाढ़ी बनाए, दाढ़ी है ही ना, नौ किशोर है, दाढ़ी कैसे आएगी। ये इसलिए भगवान को सत्य कहा गया है। केवल रहने से ही सत्य नहीं कहा जाएगा, जो परिवर्तनशील हो, जिसमें कुछ विकार आवे मन में, शरीर में और सब में, तो उसको सत्य नहीं कहेंगे। त्रिसत्यम, तीनों काल में सत्य हैं, तो उसी को फिर बता रहे हैं ब्रह्मा आदि देवता कि सत्यस्य योनिम, भगवान सत्य के योनि हैं, कारण हैं। अरे तो यहां ही प्रश्न उठता है, जब उनको सत्य कहा जा रहा है तो भगवान अपने से अपने को पैदा किए, यह बात नहीं। सत्य का एक और अर्थ होता है संस्कृत में, सत्यस्य योनिम, सत्य के योनि है, कारण है। तो सत और त्य, सत्य दो शब्द से मिलकर के सत्य बनता है। शास्त्र कहता है कि पृथ्वी, जल और अग्नि ये सत्य हैं। सत्य का अर्थ होता है स्थूल, जिनका अनुभव होता है, देखा जाता है। और वायु और आकाश को त्य कहा गया है, यहां श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि ये सत्य है, और वायु और आकाश त्य है, सत्य। तो इन पंच महाभूतों की योनि हैं भगवान। जितनी भी भूमि हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, और भूमि से विकृत जो भी घर द्वार, मनुष्य का शरीर आदि, और जो भी जल है और अग्नि है, वायु और आकाश है, इसके उत्पन्न करने वाले भगवान आप हैं। तो सृष्टि के समय यहां कुछ भी नहीं था। उपनिषद इस बात को कहता है, वेद कहता है कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था। कुछ तो होगा, हां ये कहीं चीज क्या था, नारायण थे भगवान, उनके अलावा कोई नहीं था। न ब्रह्मा नेशानो, यहां तक शास्त्र कहता है न ब्रह्मा थे न शिव जी थे, फिर अन्य मनुष्य और बकरी भेड़े सब कहां से रहे। तो कुछ भी नहीं थे सृष्टि के पहले, तो भगवान सृष्टि किए। तो ये सब माटी, हवा, आग और आकाश, ये सब कहां से लाए, क्या बैकुंठ से लाद करके लाए, कुछ भी नहीं। लाद कर लाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने संकल्प किया, एको हम बहु श्याम, मैं अकेले हूं बहुत हो जाऊं, उनकी अचिंत शक्ति है। तो प्रकट हुए भूमि विशाल, और जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब प्रकट हो गए, ये अपने आप प्रकट हुए, भगवान से निकले। तो भगवान सत्य की योनि है, पंच महाभूतों को उन्होंने पैदा किया है, सत्यस्य योनि। तो यह भगवान की पूर्व कालता सूचित हुई कि सृष्टि से पहले के ही वे हैं, क्योंकि सृष्टि के वो करता है, सृष्टि से पहले से ही है अनादिकाल से। और निहितम च सत्य, और जब यह जगत बना, सृष्टि हुई, तो इसमें भी भगवान रहते हैं, अर्थात सृष्टि के समय भी रहते हैं। उनका ऑफिस है, उनका स्थान है गोलोक, वृंदावन धाम आदि, वहां रहते हैं, सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। इस समय भी भगवान हैं, और सत्यम रित सत्य, सत्यस्य सत्यम, और सत्य के भी सत्य हैं। अर्थात जब इस पंचभूत का प्रलय हो जाएगा, सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, उसके बाद भी वे रहते हैं। तो यह त्रिकाल सत्यता, पहले भी, इस समय भी और बाद में भी, तीनों समय में वे एक रस विद्यमान रहते हैं। उनका परिवार, उनका खान पान, उनका कपड़ा, जो कुछ भी है, सब सत्य है। ऐसा नहीं कि भगवान पहले कपड़ा पहनते पहनते पुराना हो गया, फट करके चला जाएगा चिथड़ा गार्बेज में। जैसे उनका शरीर सत्य है बिल्कुल, वैसे वस्त्र भी सत्य है, उनका घर भी सत्य, उनके परिवार के परिकर आदि सब सत्य है, सब समय में, अनादिकाल से अनंत काल तक। क्या आज तक कोई कभी सुना कि भगवान इतने वर्ष तक रहे तो लक्ष्मी जी से उनका डिवोर्स हो गया? नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ये विधुर बन करके रहे ऐसा कभी नहीं है। एक समान ऐश्वर्य, एक समान सुंदरता, सुख, सब कुछ, और तीनों काल, तो उसको सत्य कहते हैं। और जीव तो कितना कितना शरीर बदला, कितना कितनी कितनी स्थितियां बदली। केवल इस मनुष्य शरीर में ही विचार कीजिए तो पहले वो 9-10 महीना तो पेट में सोकर आया, कोई ज्ञान नहीं भाषा का, जन्म लेने वाले पुरुष को पता नहीं होता कि मैं कहां पर आया, ये सोच भी नहीं सकता कहां और क्या 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 होता है। बस केवल एक काम करते देखा जाता है, कभी कभी रोता रहता है। बेचारे को कुछ ज्ञान नहीं है और मां को भी ज्ञान नहीं रहता क्यों रो रहा है। कभी कभी रोता है भूख के कारण, तो मां समझती है कि इसको कोई दुख है, दवाई खिला देती है, दूध के बदले दवाई खिला। और कभी कभी कोई पेट में या शरीर में दर्द है, उससे रोता है, कह नहीं सकता कि यहां पर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, कह तो सकता नहीं, तो दर्द के कारण रो रहा है तो माता ऊपर से और कुछ खिला पिला देती है। कि दुख उसका है, वो दुख अपना प्रकाशित कर नहीं सकता, कुछ बड़ा होने के बाद में दुख प्रकाशित करता है। उस समय केवल इतनी ही योग्यता है कि कोई दुख सुख होने पर रोना है, बस रोना। ये दशा से पार होकर के हम लोग आए हैं, गर्भवास, और उसके बाद जन्म हुआ तो गंदे गुदड़ी पर लेटाया जाता है। गांव में जो ऐसा होता है, सबसे गंदा जो वस्त्र होता है उसको बिछाया जाता है, क्योंकि वो रोज गंदा करता रहता है, उसको फेंकना होता है। तो उसमें हो सकता है खटमल हो या मच्छर लगे काटें, तो प्रतिकार नहीं कर सकते, बहुत दुख होता है। इसीलिए बच्चे रोते रहते हैं ज्यादा, तो रोते क्यों है, दुख के कारण रोते हैं ना। उसके बाद थोड़ा 3-4 साल का हुआ, अब तो 2.5 और 3 साल में ही इन लोग स्कूल भेजते हैं, जाना नहीं चाहता है बच्चों से, लेकिन उसे बाध्य किया जाता है, जाओ स्कूल जाओ स्कूल। तो पढ़ाई भी एक भारी दुख है उसके, वास्तव में पढ़ाई एक दुख है। आजकल के लड़कों को इतना ट्यूशन पढ़ करके आओ, ये करके आओ, ये करके आओ, उसके जीवन में बुद्धि और देह के विकास का कोई अवसर नहीं मिल पाता। उसके बाद पढ़ लिख गया तब कामना की उत्पत्ति होती है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, कामना की पूर्ति होती नहीं है, तो जवानी में भी वो जलता ही रहता है, दुख में रहता है। ऐसा नहीं कि जो मनोरथ करे पूरा हो जाए, तो क्रोध भी बढ़ता है, शरीर जब बड़ा होता है तो काम के साथ क्रोध भी बढ़ता है। थोड़ा बड़ा हुआ तो मां की बात भी, पिता की बात भी अब बर्दाश्त नहीं होती। कभी कभी तो लड़के ही बोल देते हैं कि आप हमसे बात मत किया कि पिताजी को, क्रोध बढ़ता है, काम बढ़ता है। अच्छा, जवानी में दुख है, इसके बाद जब धीरे धीरे बुढ़ापा में आए, कोई नौकरी करता है कुछ करता है तो सरकार भी उसको रिटायर कर देती, नहीं अब हमारे काम लायक नहीं रहे, ठीक है काम किए हैं इसलिए आधा पैसा देंगे पेंशन, लेकिन अब आप काम नहीं करें, है ना। काम रिटायर करने का मतलब है कि बेकार हो गया, ये जाओ घर पर रहो, केवल जीने खाने के लिए पेंशन देती रहे, ये हमारा पोजीशन है। कई कई स्थानों पर तो बहुत जल्दी रिटायर कर लेते हैं, जैसे मिलिट्री में, वहां तो लड़ना है ना, तो वहां जब तक शक्ति है तब तक रहो, रिटायर। शिक्षक को कुछ देर के बाद रिटायर किया जाता है क्योंकि बुद्धि का काम है, तो फिर भी रिटायर तो होते ही हैं। जब सरकार रिटायर कर देती है परिवार भी अपेक्षा नहीं रखता है, लेकिन आदमी का अज्ञान इतना है कि परिवार से रिटायर नहीं होना चाहता है। मरेगा सोचेगा मैं घर में ही मरूं ठीक होगा, अगर कोई कहे कि नहीं तीर्थों में जाइए तो नहीं, घर पर रहना ही सबसे बेटर है, इतना अज्ञान है जीव का लगा हुआ और घर पर मर जाता है, भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। तो हमारी ये दशा है, वर्तमान जीवन में ही भी हम लोग देख रहे हैं शरीर कैसे कैसे विकृत होता है। अपना ही फोटो आदमी देखे तो अगर कोई 70 वर्ष 60 वर्ष का 50 वर्ष का है तो देखेगा कि हमारा चेहरा कितना विकृत हो गया। ये सत्य नहीं है, यह सब असत्य है, जो रहेगा नहीं, रहेगा भी कुछ देर तक तो परिवर्तन में रहेगा, बदल जाएगा, इसको असत्य कहते हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के भक्त परिकर सब नित्य हैं, सत्य हैं, और तीनों काल में, सृष्टि से पहले, सृष्टि के समय भी, और सृष्टि जब नष्ट हो जाएगी फिर भगवान नष्ट नहीं होंगे, वो अपने गोलोक धाम में वही बांसुरी बजाते ही रहते। गोलोक में कोई डिसअपीयरेंस डे नहीं है, डिसअपीयरेंस डे किस परिवार में किसी का तिरोभाव हो गया, और यह तो रोज ही डिसअपीयरेंस डिसअपीयरेंस अपीयरेंस रोज आता रहता है ना। और आज ही एक व्यक्ति का अपीयरेंस है तो एक का डिसअपीयरेंस है ना। ये स्थिति है सामान्य जीवों की सबकी, लेकिन भगवान क्या है इसे मनुष्य जीवन में यही तो समझना है कि भगवान क्या है और उनके साथ हमारा संबंध क्या है और उस संबंध के अनुसार हमारा काम क्या है, कर्तव्य क्या है, यही मुख्य बात है। वही बात इस श्रीमद् भागवत से हम लोग सीखते हैं, सत्य केवल भगवान है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जो निहितम च सत्य सत्य से सत्यम रित सत्य नेत्रम। भगवान रीत और सत्य के नेत्र हैं। तो यहां पर रीत का अर्थ है, सत्यम का अर्थ है समदर्शन। एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है सत्यम च समदर्शनम रीता च रीतम च सुनृता वाणी कवि भी परिकीर्तिता। बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है, भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं कि सम का अर्थ है, सत्य का अर्थ है समदर्शन, अर्थात समदर्शन को सत्य कहते हैं, और यथार्थ वाणी को रीतम कहते हैं। यथार्थ वाणी का अर्थ होता है किसी वस्तु के निरूपण में ठीक ठीक बोलना, ठीक ठीक बोलना, तो यह केवल भगवान जानते हैं। नेत्रम का अर्थ होता है नयन साथ, नयनम नेता अर्थात प्रवर्तक, किसी विषय में युक्त क्या बोलना चाहिए ठीक ठीक, और सबके प्रति सम दृष्टि, किसी के प्रति द्रोह नहीं राग नहीं, इसके प्रवर्तक है भगवान। केवल भगवान विष्णु ही ये सबको अपना समझते हैं और सबके प्रति समदृष्टि, इसके प्रवर्तक हैं। और यथार्थ वाणी के, वाणी बहुत जरूरी है जीव का वर्णन करने के लिए, भगवान का वर्णन करने के लिए, जगत का वर्णन करने के लिए वाणी चाहिए, तो वेद वाणी उसको यथार्थ वाणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर किसी गांव के आदमी से पूछें कि ये मड़ावरा कब स्थापित हुआ था, कब चालू हुआ था बनना, तो यदि वो व्यक्ति नहीं जानता है ये कह दे कि हमको मालूम नहीं, हम तो यहां जन्म लिए लेकिन कब से ये सब है चालू हुआ मालूम नहीं, तो वो तो खैर अज्ञाता आपने स्वीकार किया और ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति बोलना चालू करे कि यहां मैं देखा कि एक दिन आकाश से सब भवन आया करके बैठ गए, रोड बन गया, ये हो गया, मैं देख रहा था तब तक आकाश से रोड भी बना बनाया आ गया, भवन भी बना बनाया आ गया, बैठा दिया गया, बैठ गया। और मान लीजिए इसी बात को कोई मान ले कि ठीक बोल रहा है, तो बोलने वाला और सुनने वाला कितना अज्ञान में रहेगा। वास्तव में मरावरा का एक इतिहास होगा, कब सबसे पहले व्यक्ति आया होगा, न छोटा घर बनाया होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ा होगा, फिर अन्य गांवों से लोग आए होंगे, यहां लिए होंगे, और एक आर्डर है, एक व्यवस्था है, कुछ का घर यहां, उसका घर यहां, रोड बनाने का भी इतिहास होगा, कैसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। इस बात को कोई न बतावे और कहे कि नहीं, एक ही दिन में सारा मरावरा आकाश टपक गया, जैसे वर्षा होती है ना, वैसे सब घर बरस गए, हो गए, और आदमी भी सब आ गए, कहीं किसी का जन्म नहीं हुआ, जो जिस उम्र के हैं उसी उम्र में आकर के सब गिर गए, टपक गए। तो ये हो सकता है कि कुछ मूर्खों के सुनने में बहुत अच्छा लगे, जैसे आजकल के वैज्ञानिक कहे जाने वाले लोग कहते हैं, पूछा जाता है सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि कैसे हुई, तो ये कहते हैं कोई इसको रचने वाला नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है बनाने वाला, कोई कंट्रोलर नहीं है, ये बाय चांस हो गया। तो बाय चांस तुम्हारा बाप है क्या, बाय चांस का मतलब क्या हुआ, चांस का क्या मतलब हुआ? प्रभुपाद जी पूछते थे चांस माने, बाई का अर्थ है से द्वारा, और चांस, तो चांस का क्या मतलब हुआ? तो वे ऐसे मुंह कर देते थे, क्या मतलब बाय चांस हो गया, कोई इसका मतलब कुछ होना चाहिए ना, यहां सब बाय चांस कुछ भी हुआ है, ये टेंट बाय चांस अपने आप आकर गड़ गया कि कोई गाड़ने वाला है, कोई लाने वाला है, तार फिट करने वाला, माइक फिट करने वाला, एक व्यवस्था है ना इसके पीछे, बाय चांस हो गया। एक ने तो यहां तक कहा है कि एक बहुत बड़ा चट्टान था, वो घूम रहा था बहुत जोर से, तो उसका कुछ हिस्सा कट करके पृथ्वी हो गया, कुछ सूर्य हो गया, कुछ ये हो गया, तो पृथ्वी तो ठंडा हो गई घूमते घूमते, लेकिन सूर्य अभी गर्म रह गया। ये कोई ज्ञान है? अच्छा, मनुष्यों की उत्पत्ति के विषय में एक महामूर्ख वैज्ञानिक बोलता है, डार्विन उसका नाम, उसने लिख दिया कि मनुष्य सब वानर से पैदा हुए। अब बताइए, वानर से पैदा हुए, कुछ कुछ उनका सूरत शकल मिलता जुलता है, इसीलिए कह दिया कि बस बाना सकते। श्रील प्रभुपाद जी इसके विषय में बहुत साफ बोलते थे कि ये बिल्कुल गलत है सोचना, अगर मनुष्य बानर से पैदा हुआ तो इस समय बानर से कोई एक आदमी एक लड़का क्यों नहीं हो रहा है, बानर से बानर हो रहा है ना बानर से कोई मनुष्य पैदा नहीं है, और बानर से जो उत्पन्न है उनको सरकार भी जनगणना में नहीं रखती है, ये आदमी से अलग है। किसी बानर को मान लिया गया कि भारत की नागरिकता दे दी गई, वो भी नागरिक है, बानर से आदमी उत्पन्न नहीं हुआ है, आदमी देवताओं से उत्पन्न हुआ है, ये शास्त्र कहता है। आज किसी से पूछिए आपका गोत्र क्या है, गोत्र का अर्थ होता है वंश प्रवर्तक, आपके वंश का शुरुआत किसने किया, तो कोई कहता है अत्रि गोत्र, कोई संडिल्य गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, है ना, इस तरह से व्यक्ति कहता है। और अंग्रेजों से पूछा जाए तुम्हारे वंश का प्रवर्तक कौन है तो वो कहेगा बानर। ये बुद्धि है। हम लोग बानर से उत्पन्न नहीं, भले विदेशी लोग बानर से जन्मे हो सकते हम लोग तो ऋषि मुनि की संतान है, कोई कश्यप जी से उत्पन्न हुआ, कोई अत्रि जी से, कोई वशिष्ठ जी से, इस तरह से ब्रह्मा जी के पुत्रों के द्वारा सृष्टि हुई है। गोत्र पूछा जाएगा, आपका गोत्र तो कोई लिख दो, मंकी, मंकी में भी कौन मंकी, नाम क्या था तो क्या बताएगा। बानरों में सभी बानर तो पैदा नहीं किए होंगे ना, तुम्हारे बाप दादा को कोई एक बानर पैदा किया होगा। ये सोचना कितना गलत है। आजकल लोग बोल देते अरे कोई ईश्वर नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं, सब चल रहा है, हो रहा है, इसके बारे में सोचो ही मत सोचो ही मत, ऐसे ही बेवकूफ बने रहो। तो इन सब के पीछे व्यवस्था है। तो मैं सुंदरता बाणी पर, रीतम पर बोल रहा था। कई लोग कई तरह से ईश्वर के बारे में बोलते हैं, ईश्वर क्या है, कैसा है, तो कुछ बोलते हैं हम भी ईश्वर को मानते हैं, ऐसा मत समझिए कि हम भी नास्तिक हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन भाई हम एक शक्ति मानते हैं, शक्ति मानते हैं। स्थूल उदाहरण देकर समझा रहा हूं, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात चले, अब 6-7 आदमी यहां बैठे हैं, हम भी मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन एक शक्ति है, कोई व्यक्ति है, ऐसा मैं नहीं मानता। और ये कोई कह दे कि नहीं वो दिल्ली में रहता है, नहीं नहीं वो सब जगह रहता है, दिल्ली में नहीं रहता है, दिल्ली में नहीं रहता है, सब जगह रहता है। सुनने वाले इसको माना करेंगे हाँ ठीक बोल रहा है, तो गलत है, तो बोलने वाला अशुद्ध वाणी बोल रहा है, ठीक बोल नहीं किया। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं ईश्वर सब जगह है, ये मंदिर में ही थोड़े हैं, मंदिर में नहीं है, सब जगह। प्रभुपाद जी कहते थे जब तुम स्वयं कह रहे हो कि सब जगह है तो मंदिर को छोड़ करके और सब जगह है, जब सब जगह है तो मंदिर में भी है ना लेकिन ये बोलने वाले मूर्ख ऐसा बोला करते हैं, मंदिर में ईश्वर नहीं, मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं। एक बार एक बहुत बड़ा नेता भारत का बोल रहा था, भारत का एक मिनिस्टर था, मैं नाम नहीं रखूंगा, और रखने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब वो है नहीं। तो वोट लेने के लिए हमारा भगवान मंदिर में नहीं रहता है, हमारा भगवान मस्जिद में नहीं रहता है, हम लोग पढ़ रहे थे, कॉलेज में थे तो सुन रहे थे फील्ड, हमारा भगवान खेत में हल चला रहा है, हमारा भगवान फैक्ट्री में काम कर रहा है, मतलब किसान को खुश करने के लिए, मजदूरों को खुश करने के लिए हमारा भगवान ये कर रहा है, हमारा भगवान रोड पर गिट्टी उठा रहा है, कई कई गिनाए सुनिया दे, हमारा भगवान ये करता है, हमारा भगवान ये करता है, हमारा भगवान मंदिर में नहीं रहता है, हमारा भगवान एक टूटी झोपड़ी में रहता है, और एक नहीं है हमारे हमारा भगवान, हमारे भगवान असंख्य है, अनंत, वो कई हजार लाख कह रहा था, और तालियां बज रही थी खूब जोर से, बाप रे बाप, भगवत तत्व का निरूपण करने वाला दिल्ली से आया है और इतना फैक्ट बोल रहा है। देखिए ये अयथार्थ वाणी बोलना। तो जब तुम्हारा भगवान खेत में हल चला रहा है तो तुम संसद में क्यों बैठ रहे हो, जाकर पूजा करो उसकी, है ना। पुजारी बैठा है संसद भवन में या अपने जो उसको जो क्वार्टर मिला है उसमें, और उसका भगवान बेचारा हल चला रहा है। ये पुजारी के प्रवचन सुनिए, सासाराम में प्रवचन चल रहा था, उसी सासाराम क्षेत्र का वो व्यक्ति सांसद था। ऐसी ऐसी बातें बोलना बेढंगा। अरे कहो कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा भगवान यहाँ है, हमारा भगवान यहाँ है, हमारा भगवान यहाँ है। अच्छा, इससे भिन्न कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन भाई हम भगवान को निराकार मानते हैं। हम भी प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं, लेकिन हम निराकार मानते हैं। कोई ये कहे कि वो पगड़ी बांधते हैं, वो बैठते हैं, पैजामा लगाते हैं, कोट लगाते हैं, हम ये नहीं मानेंगे। तुम मानते क्या हो मूर्ख, कहेंगे। केवल कहे कि हम प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं लेकिन निराकार मानते हैं, तो उसके मानने का मतलब क्या है? तो झूठ बोल रहा है ना। हम भगवान को मानते हैं लेकिन निराकार मानते हैं, यह गलत गलत बोलना हुआ। इससे बेटर है कह देना कि हम नहीं मानते। इससे अच्छा है ना। और कुछ लोग भगवान को मानते हैं, आकार भी मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि हाँ जैसे और लोग हैं ऐसे भगवान भी बूढ़े होते होते मर गए होंगे, जैसे और सबको मरते हुए देखता है, तो कहते हैं हम मानते हैं लेकिन भगवान अब मर गए होंगे, इतना थोड़े जिएंगे। जब से सृष्टि किए तो अब वो मर गए होंगे। और अहमदाबाद में एक मंदिर है, उसमें भगवान को बूढ़ा दिखाया गया है। तो कौन भगवान नाम नहीं है, बूढ़ा, केस पका हुआ है, दाढ़ी पकी है और शरीर पर झुरियां पड़ गई हैं। तो ये मान्यता से कि भगवान बहुत दिन के हो गए तो अब बूढ़े हो ही गए होंगे, और हो सकता है कि मर भी गए होंगे। इन सब बातों का जिनको ज्ञान नहीं है फिर भी वो बोलते रहते हैं, हजारों हजार लाखों लोगों की सभा में बोलते हैं ऐसे मूर्ख लोग। कौन कहता है कि राम भगवान है, कौन कहता है कि कृष्ण भगवान है? अरे हुए कोई तेजस्वी महापुरुष थे, मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, कुछ लोगों ने इनको भगवान कह दिया, कुछ लोगों ने इनको भगवान बना दिया। एक महामूढ़ तो ये भी बात बोला था, जब सेतु बंधन की बात चल रही थी तो कहा था कि अरे राम हुए थे कि नहीं ये कौन जानता। बाप रे, इस तरह के मूर्ख इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। और उनकी बातों को सुनने वाले भी उल्लू भरे थे, पूरा मैदान में बोल रहा था। जैसे एक उल्लू बोले मंच पर चढ़ करके, कोट पहन करके और जो भी परिवेश धारण करना हो, बोले, मान लीजिए लाखों उल्लू बैठे हैं सभा में और वो कहे हम सूर्य को नहीं मानते, तो सभी उल्लू ताली बजाएंगे, आहा कितना सत्य बता रहा है, बाप रे बाप, हम तो बड़े अज्ञान में थे, हम तो सूर्य को मानते थे, लेकिन ये चूंकि वो उल्लू देखा नहीं सूर्य को कभी, और जितने भी उल्लू सभा में बैठे थे वो कभी देखे नहीं, कभी समझे नहीं, कभी भागवत सुने नहीं, तो क्या कहेंगे? यही सब बातें कहेंगे ना। हाँ राम थे लेकिन अब नहीं रहे, कृष्ण थे लेकिन अब नहीं रहे, इस तरह की बातें बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सृष्टि के विधाता रचयिता सबसे बड़ा ज्ञानी और भगवान शिव साथ में, वे कहते हैं कि आप अनंत अनादि काल से हैं, इस समय हैं और अनंत काल तक रहेंगे, सृष्टि से पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, और अव्यभिचारी रूप से सत्य रूप में, ये है वास्तविक प्रवचन। तो संसार का वर्णन या भगवान का वर्णन या जीव का वर्णन, किसी भी चीज का वर्णन करना केवल भगवान जानते हैं, ठीक ठीक वही जानते हैं, जानते हैं और बोलना भी जानते हैं ठीक से, कितने शब्द चाहिए, कितने में इसका निरूपण होगा, क्या यथार्थ है, वही जानते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ कौन राम समझान यथारथ। चाहे नीति प्रीति या परमार्थ व्यवहार किसी भी विषय में श्री राम के समान कोई नहीं जानता। कौन राम समझान यथारथ, यथार्थ नहीं जानता। तो जो जानेगा और इसके साथ ही साथ उसमें बोलने की क्षमता रहेगी वही ठीक बोल पाएगा ना। तो सबको उत्पन्न किए हैं भगवान और सबके बारे में वे बोले हैं सब कुछ, किसका क्या धर्म है, किसको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए और कैसे मुक्त होगा, वही बोल सकते हैं ठीक से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप समदर्शन और यथार्थ वाणी के प्रवर्तक, रित सत्य नेत्र और सत्यात्मकम, और आपकी आत्मा मतलब सत्य है, आपका ये जो देह है स्वरूप है ये सत्य है, चिदघन है, चिन्मय है, सत्यात्मकम का अर्थ है आपका स्वरूप सत्य है, ये कभी न तो बूढ़ा होता है न कभी क्षीण होता है, मरने आदि का तो कोई सवाल ही नहीं है, सब सोचना ही मूर्खता है। सत्यात्मकम तम सरलम प्रपन्न, हम सब आपकी शरण में हैं। करोड़ों करोड़ों अरबों वर्ष के बड़े व्यक्ति भगवान शिव और ब्रह्मा जी, शिव जी तो खैर उनके उम्र का कोई लिमिटेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्रह्मा जी की उम्र लिखी गई है, तो इतने उम्र के ब्रह्मा जी नारद जी जैसे महाज्ञानी महाभक्त के पिता, सनकादि के पिता, सृष्टि के मैनेजर सब, वे भगवान की शरण में, हम आपकी शरण में। किसकी शरण में? बाहर से देखा जाए तो देवकी के गर्भ में रहने वाले बच्चे की शरण में, हम आपकी शरण में। तो मान लीजिए भगवान अगर ये कहें कि ननु भवंत लोकेश्वर, भवंत व लोकेश्वरा, आप लोग भी तो लोक के ईश्वर हैं। भगवान शिव को तो ईश्वर कहा ही जाता है, महेश्वर या ओंकारेश्वर या महाकालेश्वर, उनमें तो ईश्वर शब्द लगा ही रहता है, बनारस में विश्वेश्वर, तो आप भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी भी ईश्वर हैं लोकों के, इंद्र आदि सब लोकपाल हैं, तो आप लोग तो हमारे समान ही लगभग हैं। भगवान यदि ये कहें कि आप लोग हमारे समान ही हैं, आप क्यों मेरी शरण ले रहे हैं? तभी कहते हैं मयूम वाच्य, हे प्रभु आप ऐसी बात नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं हैं, आप एकमात्र ईश्वर हैं, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब धृत जारे जैसे नाचाए से तैसे करेंगे। ईश्वर वास्तव में आप हैं, हम सब सेवक हैं आपके, हम पर कृपा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। यह बात कह करके भगवान को फिर नमस्कार करते हैं। किस तरह से आप लोक के ईश्वर हैं, भगवान हैं, इसको अगले श्लोक में बता रहे हैं। एकायनो सौ द्विफल त्रिमूल चतुरसह पंचविध षडात्मा सप्त त्वगष्ट विटपो नवाक्षो दश छदि द्वि खगो यादि वृक्ष। इसमें संख्यावाचक शब्द लिखेगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, देखिए ध्यान से प्रत्येक शब्द में ये सब। एकायनो सौ असौ एकायन, द्वि क्या है, द्वि खगत द्विफल त्रिमूल चतुरस पंचविध षड आत्मा सप्तत्वगष्ट सप्तत्व अष्ट बीटप नव अक्ष दश छदि द्वि खगो आदि वृक्ष। तो दो बार का प्रयोग, दो का दो बार है। तो ब्रह्मा जी आदि देवगण यह बता रहे हैं कि हे प्रभु, यह विश्व एक वृक्ष की तरह है और आप इसके कंट्रोलर हैं, पालक हैं, चलाने वाले हैं, पोसने वाले हैं। तो पहले विश्व प्रपंच को एक वृक्ष के रूप में वर्णन करते हैं। देखिए, व्यष्टि समष्टि मनुष्य का या जीव का शरीर और पूरा ब्रह्मांड इसका वर्णन करते हैं ये वृक्ष के रूप में। भगवान ने गीता में भी कहा है कि यह प्राकृतिक जगत एक वृक्ष वृक्ष की तरह है, रूपक देते हैं। वृक्षते छिद्यते कालेन इति वृक्ष, इसलिए वृक्ष से उपमा दी जा रही है कि यह विश्व एक दिन नष्ट हो जाता है। किसके द्वारा? काल के द्वारा। काल के द्वारा जो काटा जाए, वृक्ष का अर्थ होता है काटना, वृक्ष छिद्यते सब वृक्ष। वृक्ष देखते हैं हम लोग, जन्म लेता है और कुछ काल के बाद कुछ वृक्षों को देखते हैं वो नष्ट हो जाता है, और कोई बरगद आदि के वृक्ष ज्यादा दिन जीवित रहते हैं लेकिन वो भी कालांतर में गिर जाते हैं, और कई वृक्ष की डालियां पत्ते आदि होते हैं। तो उसे उपमा देते हैं, रूपक देते हैं। एकायनोसौ यह प्राकृत प्रपंच, यह विश्व एकायन है। एका प्रकृति ही अयनम आश्रयम जस्य स्व, एक अयन प्रकृति इस विश्व का आश्रय है, अर्थात ये प्राकृत है। भगवान की बहिरंगा शक्ति ने इसको बनाया है, ये अर्थ है। एकायन अयन का अर्थ है आश्रय। इसके परे एक दूसरी प्रकृति है, भगवान की परा प्रकृति जो वैकुंठ में रहती है, लेकिन यह जो है प्राकृत शक्ति भगवान की बहिरंगा, ये इस विश्व का आश्रय है। एकायन द्विफल, और इस फल वृक्ष के, इस प्राकृतिक जगत में दो फल हैं, इस वृक्ष में दो फल, संख्या में दो प्रकार के फल लगते हैं इसमें। क्या? सुखम दुखम। कभी यहां व्यक्ति सुख भोगता है, कभी दुख भोगता है, किसी को सुख है, किसी को दुख है। यहां दो ही फल लगता है, दो प्रकार का, दुख और सुख का फल। वैकुंठ में न सुख का फल है न दुख का, वहां केवल आनंद है, वहां दुख सुख नहीं है, मतलब अद्भुत सुख है, केवल सुख। यहां देख रहे हैं संसार में कितने लोग बहुत दुखी हैं, कोई कोई रोग से दुखी है, कोई भोजन के बिना दुखी है, कोई घर के बिना दुखी है, या घर भी है तो घर में भी कोई सुखी थोड़े है। एसी चलता रहता है, ठंडा लगता है, लेकिन कलेजा में चिंता की आग जलती रहती है, यह सब देखा जाता है बहुत। और एक ही आदमी कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का भी अनुभव करता है, सब मिला करके यहां दुख ज्यादा है। सुख का फल तो कम लगता है, कोई कोई सुख का अनुभव करते हैं, हम सुखी हैं, हम ये हैं, ये हैं, कुछ दिन के लिए। तो इस प्राकृतिक जगत में सुख और दुख का फल लगता है, द्विफल त्रिमूल। इस वृक्ष की तीन मूल शाखाएं हैं जिन पर टीका हुआ है। तीन मूल क्या है? प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही संसार वृक्ष की जड़ें हैं। तीन गुण पर टिका हुआ है, और प्रकृति अयन है, अयन का अर्थ थाला, उस पर टिका है, और उसकी तीन जड़ें हैं। यहां सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। ये तीनों गुण प्रकृति के वैकुंठ में नहीं है, वहां अप्राकृत स्थिति है। चतुरसः, अस वृक्ष के चार रस हैं, चार रस, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहां रस का अर्थ है कि इस संसार में आदमी चार पुरुषार्थ कमा सकता है, धर्म करके स्वर्ग आदि में जा सकता है, और अर्थ कमाएगा, और इंद्रियों का भोग, खान पान, घर बनाना, ये सब स्त्री संग्रह, ये सब काम के अंदर आता है। धर्म, अर्थ और काम, और अंत में इसी संसार में अगर साधना करे तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये भी एक रस है, पुरुषार्थ। तो चतुरस, चार पुरुषार्थ हैं इस प्राकृतिक जगत में कर सकता है व्यक्ति। पंच विधा, विधा का अर्थ होता है ज्ञान प्रकारा। इस संसार को पांच प्रकार से जान सकते हैं, पांच ज्ञान इंद्रियों से इसको जानते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, और नासिका से सूंघते हैं, स्पर्श से स्पर्श का अनुभव करते हैं, तथा रसना से रस का अनुभव करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इस संसार को भोगने का या जानने का पांच प्रकार है। मनुष्य के पास, एक जीव के पास पांच कर्मेंद्रियां हैं जिनसे जीव काम करता है, और पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं जिनसे कि संसार का ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे जिह्वा से ज्ञान प्राप्त करता है कि यह वस्तु खट्टी है या मीठी है, ज्यादा नमक है या कम नमक है, टेस्ट कैसा है, जिह्वा से ज्ञान प्राप्त करता है। आंख से टेस्ट का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मान लीजिए कोई छाछ पी रहा है और उसमें ज्यादा नमक है, खूब ज्यादा, तो आंख से देखकर नहीं समझ सकता। या एक गिलास से दूसरे गिलास में ढार करके शब्द निकाले और कान से भी ज्ञान नहीं होगा। और त्वक में सटा करके देखे चमड़े में, तभी पता नहीं चलेगा। सूंघ करके देखे तब भी पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा कि इसमें हलाहल नमक है, जब वो पिएगा, या दाल में ज्यादा नमक है या नहीं है, मीठा क्या है। तो रस का ज्ञान जिह्वा से प्राप्त होता है। रूप का ज्ञान, ये पशु है, ये आदमी है, ये ऊंचा स्थान है, नीचा स्थान है, या सामने से ट्रक आ रहा है, ये क्या हो रहा है, इसको आंख से देख करके ज्ञान प्राप्त करना। ये अपना स्वजन है या क्या है। केवल व्यक्ति को कहा जाए कि टच करके देखो कि कौन है, तो पता नहीं चलेगा, है ना। उसको तो आंख से देखेंगे तब पता चलेगा। हाँ, कभी कभी उसका शब्द कान से सुन करके भी पता लगा लेते। मोबाइल में तो सुन करके ही पता लगा लेते हैं, पूछना नहीं पड़ता है कि किसकी आवाज है। सुनते सुनते एक अभ्यास हो जाता है। तो इस संसार को जानने के लिए पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, और भगवान को भी जानने के लिए यही है। तो संसार को जानने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, भगवान को जानने के फेर में पड़ना चाहिए। जिह्वा से गाना, प्रसाद खाना, वाग इंद्रिय से गाना, भगवान का दर्शन करना मंदिरों में, भगवान के बारे में लिटरेचर पढ़ना, इन इंद्रियों से काम लेना चाहिए। तो संसार को जानने के पांच प्रकार है, पांच ज्ञान इंद्रियां, पंच विधा, और सदात्मा। इस आत्मा का अर्थ है स्वभाव। इस संसार का, इस देह का स्वभाव है छह प्रकार का। सद स्वभाव इसका है ही, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, इसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव है इसका छ। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। शरीर और या ये संसार, दोनों के बारे में बात कही जा रही है। छह स्वभाव है इसका, जन्म मृत्यु। यहां इस संसार में जो कुछ बनेगी चीजें, और वो निश्चित मरेगी, देह निश्चित मरेगा, जन्म लिया है मरेगा। तो जन्म और मृत्यु, विशेष करके जन्म को स्वभाव नहीं माना गया है। वास्तव में मृत्यु और बुढ़ापा, ये स्वभाव है। यहां शरीर वृद्ध होगा ही और मरण होगा ही, ये स्वभाव है। और ये शरीर का स्वभाव है, और प्राण का स्वभाव है बुभुक्षा और प्यास। ये शरीर है तो भूख लगेगी ही, ये स्वभाव है। भूख के लिए कोई बाहर से तार नहीं जोड़ना पड़ता है इस शरीर में कि भूख लगे, भूख लगेगी ही और प्यास लगेगी, ये स्वभाव है। और मन का स्वभाव है शोक और मोह। व्यक्ति को चिंता में रहेगा ही, ये स्वभाव है। और मोह में, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मैं हूं, ये इसको मोह कहते हैं। अज्ञान ये रहेगा ही, छह स्वभाव है। इस संसार का स्वभाव है, स्वभाव समझ करके व्यक्ति को अपने स्वभाव में आना चाहिए। जब तक हम प्राकृत शरीर के बंधन में हैं, मन के बंधन में हैं, तब तक ये फेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जीवन की एक समस्या है भोजन करना, भोजन बनाना पड़ेगा। कोई सोचे कि नहीं, मैं भूख ही नहीं लगने दूंगा और भोजन बनाने का झंझट में नहीं करूंगा, न तो किचन रखे, न चावल दाल आदि ले, कहे कि मैं भूख लगने नहीं दूंगा, देखता हूं भूख मुझे कैसे सताती है। लेकिन एक दो दिन बीतते बीतते फिर चूल्हा झोंकना पड़ेगा, इधर से सामान जुटाओ, ये करो वो करो। दो चार दिन की तो बात अलग है, एक ही दिन में दो दो तीन तीन बार चूल्हा जलाना पड़ता है। भूख लगेगी ही, तो एक प्रकार से जीवात्मा को इस संसार में भूख से लड़ना पड़ रहा है। रोज लड़ाई होती है, भूख मर जाते ठीक है, पेट भर गया ठीक है, अब नहीं चाहिए। पांच छह घंटे के बाद फिर वो सेना लेकर के खड़ी, और शरीर में ही भूख उत्पन्न होती है प्राण में। कोई ऐसा इंतजाम होता है कि एक बार खा लिए और जिंदगी भर उच्चा ले सकती, ऐसी कार बना दी जाती जिसमें एक बार पेट्रोल डालिए और बस जिंदगी भर हाँकी, कितना अच्छा होता है, है? या ऐसी कार जिसमें पेट्रोल की जरूरत ही ना हो, वो तो बैकुंठ में है ऐसा शरीर, इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो भोजन से नहीं जीता है शरीर, उस स्वतः स्वभाव ही है उसका जीना, चेतन है। लेकिन इस संसार में भूख एक बहुत बड़ी समस्या है और प्यास भी समस्या है। प्यास से लड़ने के लिए, प्यास बुझाने के लिए इतने पानी की जरूरत, यहां से पानी लाओ, ये पानी लाओ। तो कुछ धूर्त लोगों ने प्यास बुझाने के लिए अब अपना अपना बिजनेस खोल दिया है, बोतलों में पानी बंद कर करके दूध के भाव से बेचो। अजीब मानव समाज है और अजीब मनुष्यों की व्यवस्था है कि शुद्ध धरती का पानी भी पीने की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो इस अवसर से लाभ उठा करके कुछ पूंजीपति लोग, पानी हम दे रहे हैं, फिल्टर पानी, मिनरल वाटर दे रहे हैं पानी। ये चंपाकल का पानी जो बहुत गहरे से हो, वो मिनरल वाटर का बाप है, परम शुद्ध। और तो सड़ा हुआ पानी कब पैक किया, कब यहां ढोता हुआ, लोग इसी को पी रहे हैं। एक तो ऐसे ही बेचारे प्यास की समस्या में है, अब वो सड़ा हुआ पानी इधर उधर से पैक किया हुआ पिए, पिला रहे हैं। जो भी हो, इस तरह से पीना खाना, खासकर के गर्मी के दिन में पीने से किस तरह युद्ध किया जाता है प्यास से। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, पानी 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 पानी, इधर से पानी पानी पानी, पानी पी करके तब थोड़ा फील करते हैं कि मैं ठीक हूं, प्यास लग। और जाड़ा में भूख, गर्मी में तो थोड़ा भूख कम रहती है, लेकिन जाड़ा में पेट जल्दी जल्दी पचाता है। तो बहुत, या सालों भर तो खाना ही है, लेकिन थोड़ा अधिक है जाड़ा में और पानी गर्मी में। तो भूख प्यास यह स्वभाव है, शरीर जब तक रहेगा इसका स्वभाव है। स्वभाव का मतलब क्या होता है? अपना भाव, अपनी स्थिति। जैसे एक मोटा उदाहरण दे रहा हूं, बकरा होता है, बकरा देखे हैं? बकरा में एक अजब गंध होती है, जिधर निकलता है तो गंध निकलती ही रहती है, गंध निकलती रहती है, तो उसको स्वभाव कहते हैं। बकरे में वो गंध निकलेगा ही, ऐसा नहीं है कि 10-20 साबुन लगा करके और गंध साफ कर दिया जाए, नहीं, वो रहेगा ही, उसके स्वभाव में ही गंध है। तो इस तरह शरीर का स्वभाव है, इसमें प्राण है तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, और बहुत समय मनुष्यों का भूख से लड़ने में बीत जाता है। सवेरे अगर कोई मान लीजिए 7 बजे भोजन चालू करता है बनाना, तो भोजन बनाते बनाते 9 बज जाता है, फिर उसको खाओ पियो, खाने में समय लगता है, और फिर बर्तन को मांजो धोवो ये करो, तो सुबह शाम भोजन बनावे तो उसका लगभग 5-6 घंटा तो खाने पीने में चला जाता है, भोजन बनाना चालू करने पर। और फिर उसके लिए सामान जुटाओ, काम करो, तो उसमें कितना समय गया, भूख प्यास। और मन का धर्म है शोक मोह, कोई ऐसा नहीं है जो कुछ न कुछ चिंता न करता हो, शोक करना है, थोड़ी थोड़ी बात के लिए भी जीव शोक करता रहता है। यदि मान लीजिए वो कहीं पर जा रहा है और बीच में रेलवे का क्रॉसिंग पड़ गया, तो अगर जल्दी से रेल पार कर गई तब तो ठीक लगता है, इधर से भी गई उधर से भी आई, अगर 2-4 आई तो बेचारा कार में बैठे मरने लगता है, बैठे बैठे क्या हो रहा है, शोक होने लगता है उतनी बात के लिए। और तो लाखों चीजें हैं, लाखों बातें हैं जिनके लिए जीव कुछ न कुछ सोच करता रहता है। टाइम पर भोजन नहीं मिला तो शोक करेगा, देर हो रही, क्योंकि शोक एक स्वभाव है मन का, स्वभाव से वो शोक कर रहा है, न कि वास्तव में वस्तु के अभाव से। कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको लोगों से प्रणाम लेते लेते आदत पड़ जाए, तो कभी वो जाए और अकस्मात कोई प्रणाम नहीं किया तो जलने लगेगा कि हाय हमको प्रणाम क्यों नहीं किया जा रहा। स्वभाव है ये मन का, है ना, ऐसा होता है। एयरपोर्ट पर मान लीजिए किसी को लेने के लिए 2-4 गाड़ी जा रही हो और किसी समय एक भी गाड़ी न जाए तो ऐसे ही जलने लगेगा शोक की आग में, अरे हमारे शिष्य सब मर गए, कहां चले गए, कौन नहीं आए, क्यों नहीं आए, 2-4 4-5 गाड़ी आती थी, एक गाड़ी भी नहीं आई। इस तरह से आदमी जलने लगता है। और कभी कभी तो हम लोग सुने हैं, देखे नहीं हैं, कि कोई व्यक्ति प्रणाम नहीं करने से ही बिल्कुल दुख में पड़ गया, वो हमको प्रणाम क्यों नहीं किया, अरे प्रणाम करने से तुमको मिलेगा क्या, प्रणाम क्यों नहीं किया, प्रणाम केवल भगवान को करना चाहिए। भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, लेकिन लोग भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं। देखा गया यहां भी, यहां करके किसी साधु को मुझको प्रणाम करते हैं लेकिन भगवान को नहीं, क्या उल्टा है। प्रणाम के विषय है कृष्ण भगवान, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो ये एक आदत हो जाती है, अगर किसी को प्रणाम बहुत किया जाए तो कभी न कभी तो कमी होगी ही प्रणाम करने में, कभी कमी हो गया, दूसरी जगह गया, दूसरे गांव में जहां कोई प्रणाम अभी करता नहीं है, तो सोचने लगा उस गांव में इतना प्रणाम दे रहे थे, इस गांव में 2-4 भी नहीं कर रहे, तो अब उसको सुख नहीं रहेगा, वो तो मरता रहेगा इसी विचार में। यह अपूर्णता का लक्षण है। इसी तरह की बात है किसी भी विषय में, हमारा बेटा हमारे अनुकूल नहीं है, सोच सोच करके मरता रहता, जो मिलेगा तो कहेगा ये बेचारा नालायक हो गया, ऐसा ऐसा न पढ़ता है न काम करता है, सुख करना स्वभाव है। क्या होगा हमारे परिवार का बाद में, अभी तो मैं जी रहा हूं तो चला रहा हूं, आगे क्या होगा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो मैं कहा कि शाम को कथा होने वाली है, आप रुक जाइए। तो व्यक्ति बोला, अरे महाराज इतना अर्जेंट है हमको जाना, इतना अर्जेंट है, मैं क्या बताऊं। तो खडिया की बात है, तो हमारे पास एक लड़का रहता था सूरत में, थोड़ा विदूषक टाइप का, जोकर टाइप का, तो हमारे पास बैठा था। वो कहा कि बहुत अर्जेंट है, तो वो कहा हमसे वो लड़का, हाँ महाराज बहुत अर्जेंट है, इनको छुट्टी दीजिए। क्या अर्जेंट है, मैं उससे पूछा क्या अर्जेंट है। शेषनाग जो भूमंडल को टांगे हैं उनका सिर दुख रहा है, पटकने वाले हैं, ये जाकर के उसको धारण करेंगे, इनको छुट्टी दीजिए। और अरे बाप रे बाप, भगवान शेषनाग का मुंड दुख गया है, अब वो पटकने वाले हैं, यही जाकर धारण करेंगे। हम लोग तो हंसने लगे। वो व्यक्ति इतना रंज हुआ, कहा कि केवल पृथ्वी टांगना ही अर्जेंट है और कोई अर्जेंट नहीं है। और तो और अर्जेंट है, अर्जेंट है, सबसे अर्जेंट है कि भगवान का नाम जपना इस जीवन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो वो व्यक्ति नहीं गया। अभी शेषनाग जी पृथ्वी टांगेंगे, कोई बाद में जाकर के टांग लेना। ऐसी ऐसी चिंता में लोग रहते हैं, काम की चिंता, ये चिंता, वो चिंता, ये चिंता, परिवार के, पुत्र के, समाज के, इस शरीर में जब तक हम रहेंगे और मन में, तब तक ये होगा ही। बड़े बड़े साधकों को जीवन में देखा जाता है, साधुओं को, वो भी सुखी नहीं है, चिंता में है, क्योंकि इसलिए कि वो प्राकृत शरीर में है। जैसे साधुओं को भी भले भजन करे भूख तो लगती ही है, प्यास लगती है, बुढ़ापा आती है, मरण होता है, उसी तरह से शोक मोह भी होता है। मोह का अर्थ है शरीर में आत्मबुद्धि, ये शरीर मैं हूं, ये परिवार वाले मेरे हैं, या मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा गांव है, मेरा देश है, मेरी संपत्ति, ये सब, यह अज्ञान है, इसको मोह कहते हैं। और जिस दिन आंखों की पलक अंत में बंद होगी तो सब छूट जाएगा। अब दूसरे शरीर में चालू होगा, मेरा मेरा मेरा, दूसरे शरीर में जाएगा आदमी, दूसरे गांव में, तो वहीं पर अब मेरा मेरी दूसरा होगा, अब यहां के सब छूटे। किसी से पूछा जाए कि पूर्व जन्म में आपके संबंधी कौन कौन थे, और ये बताइए पूर्व जन्म में आप किस स्थान पर थे, कुछ भी याद नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह देंगे पहले था ही नहीं, पहले था ही नहीं, ये कह देने से तो कोई उत्तर आएगा नहीं, थे पता नहीं है कि थे, लेकिन थे। और इसी शोक मोह में, तो शोक मोह, भूख प्यास और जरा मरण, बुढ़ापा और मृत्यु। बुढ़ापा आएगी, चाहे लाख आदमी लाख उपाय करे, कायाकल्प करवावे, या जड़ी बूटी खाए, या योगासन करे, कुछ भी करे। लेकिन एक व्यक्ति बता रहा था बॉम्बे में हमको, अपना शिष्य, कि महाराज जब से मैं कपाल भाती करने लगा, प्राणायाम करने लगा, तो मेरा पका हुआ केस काला होने लगा। तो वो उसके डेढ़ वर्ष के बाद हमको मिले, तो मैं देखा कि सारा बाल उजला हो गया। तो मैं कहा कि आप तो कह रहे थे कपाल भाती करने से और अनुलोम विलोम करने से काला केस हो गया है। पता नहीं उस समय काला हो रहा था, लेकिन अब तो स्वभाव तो है श्वेत होने का, काला होने का स्वभाव थोड़े है शरीर का, जब सफेद होने लगा तो होने लगा। तो सफेद बाल काला नहीं होता है, अस्वाभाविक कुछ लोग काला करते हैं, कुछ मसाला लगा करके दिखाते हैं कि अभी मैं जवान हूं। इतना इग्नोर करना, इससे मृत्यु थोड़े छोड़ देगी। जमराज जी भ्रम में नहीं पड़ेंगे, वो जान जाएंगे कि मसाला लगाया है। तो उनको भी भ्रम में डालना चाहते हैं लोग। जब स्वभाव है केस पकने का तो ठीक है, जो अवस्था है उसी में भगवान का भजन करना है। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान का भजन काला केस वाले ही करेंगे, काला केस वाले तो और संसार में फंस जाते हैं। हमको दूसरा आदमी पसंद करे, हम उसको पसंद करें, वो अच्छा है बुढ़ापा की अवस्था, जबकि संसार का कोई आदमी पसंद न करे और हमारा भी मन न लगे उसमें, अच्छा है वो। भगवान के भजन का एक सुजोग होता है, शुरू शुरू में देखा जाता है कि अगर एकाध केल केस पाकना चालू होता है तो उसको लोग उखाड़ करके अलग करते हैं, है ना, ऐसा होता है एकाध पकड़ना चालू कर। लेकिन जब उनकी संख्या ही अब ज्यादा होने लगे तो क्या करें। तो कोई भगवान के भजन में ये यही सहायक है, सहायक है, जब संसार के लायक आदमी ना रहे भगवान की भक्ति करे। तो स्वभाव है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वभाव है संसार का, यहां बुढ़ापा आएगी ही, और इसके बाद बुढ़ापा ही नहीं आकर के दम ले लेगी, मरण होगा। ऐसा नहीं है कोई कहे ठीक है बूढ़ा बना दे लेकिन रह दे छोड़ दे, हम जीना चाहते हैं, जैसे वेदव्यास देव के नाना जी बूढ़े थे लेकिन जीना चाहते, नहीं जीने नहीं देगा ये माया शक्ति, जीने नहीं देगी, दुख भी सब कुछ रहेगा, खाना बनाइए खाइए, रोज शौच जाइए ये कीजिए आफत, लेकिन इसके बाद भी जीना नहीं, दुख जिंदगी भर होकर के फिर भी भगवान मार डालेंगे। अनित्यम असुखम, यह शरीर असुख है लेकिन अनित्य है। कोई अगर भगवान से चाहे कि कहे ठीक है हमको दुख नहीं रखिए बूढ़ा ही रखिए, लेकिन हे भगवान मारिए मत, नहीं दुख में भी बुढ़ापा में भी रखा जाएगा और मारा भी जाएगा। जाओ अब दूसरा अध्याय चालू करो दूसरे जन्म में। ये स्वभाव बता, सदात्मा मन का भी यही स्वभाव है, दो और शरीर का स्वभाव है, जायते वर्धते परिणमते और अपक्षीयते, वर्धते छूट गया, जायते वर्धते जायते वर्धते तिष्ठति और परिणमते अपक्षीयते विनश्यति, छह विकार शरीर के हैं। एक दिन शरीर जन्म लिया है, जन्म के बाद बढ़ता है, इसका स्वभाव है बढ़ने का। कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं मैं बच्चा ही रह जाता मुझे काम नहीं करना पड़ता, नहीं बढ़ना ही पड़ेगा, बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर के तिष्ठते कुछ काल रहता है और विपरिणमते और कुछ पैदा करता है, बच्चा पैदा करे चाहे केस नाक कुछ न कुछ पैदा करता रहे, है ना, केस जितना काटे सब एक जगह रखा जाए तो इतना दूर में हो जाएगा, शरीर में कुछ बढ़ता रहता है, केस नाक केस और संतान बढ़ते हैं वर्धते, और विपरिणामते फल पैदा करता है, बच्चा उत्पन्न करता है चाहे जो कुछ करता है, और अपक्षीयते इसके बाद ये शरीर छीण होना चालू होता है, एक निश्चित अवधि के बाद अब नीचे गिरने चालू होता है जवानी के बाद, और अंत में विनाश्यति खत्म हो जाता है। ये छह विकार होता है, ये होगा ही, रुक नहीं सकता है। कभी कभी लोग बूढ़े लोग अपने जवान शरीर की याद करते हैं, ओहो मैं जवान ही रह गया होता कितना अच्छा हो, सोचने से क्या होगा, स्वभाव तो वो है शरीर का, तो बूढ़ा होगा ही और मरेगा। ये उनके लिए ज्ञान दिया जा रहा है जो ज्ञान लेने के अधिकारी हैं, योग्य हैं, युवक हैं या बच्चे हैं, उन्हें मान करके चलना चाहिए कि हमारे शरीर का स्वभाव है बूढ़ा होना मरना, इसीलिए जवानी में भगवान का भजन कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। यह ज्ञान इसीलिए दिया जाता है कि हम सावधान हो जाएं, इस नश्वर शरीर को पा करके भूले ना। कभी कभी जवानी में आदमी इतना मदमत्त रहता है कि वो सोचता है कि जवानी हमारी बहुत काल तक रहेगी, ये जाने वाली नहीं है, तो बूढ़े लोगों को देख करके कभी कभी हंसता है उन्माद में, बूढ़ों का तिरस्कार करता है। और आज की दुनिया में तो और अज्ञान बढ़ा है, नवयुवक संघ बनता है, लेकिन वृद्ध संघ नहीं बन रहा है। जबकि अनुभव ज्यादा है, बहुत दिन जीने से वृद्ध लोगों का अनुभव किसी भी विषय में ज्यादा होता है, उनसे राय लेना, उनसे बात पूछना ये धर्म होता है, लेकिन सब अज्ञ लफंगे नवयुवक संघ बना लेते। किस लिए संघ बनाए हैं, अब जो भी उनका उद्देश्य हो, लेकिन नवयुवक संघ सुना जाता है। और ऐसे नवयुवक लोग कभी कभी बूढ़ों पर हंसते हैं, देखो बूढ़ा हो गया अब इसको मरना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी एक कहावत कहे हैं बंगला में, उसका भाव है कि जब सूखा गोबर गोइठा बन करके, कंडा बन करके चूल्हा में जाता है तो गीला गोबर हंसता है, ओ ये सूख गया इसीलिए इसको चूल्हा में जलना पड़ता है, जा रहा है, मैं तो कभी हमेशा गीला रहूंगा, मैं गीला रहूंगा इसीलिए चूल्हा में मुझको नहीं जलाया जाएगा, है ना। गीला गोबर नहीं जलाते, सूखा गोबर जलाते। तो गीला गोबर सूखे गोबर पर हंसता है कि ये बेवकूफ सूख गया इसीलिए लोग भोजन बनाने में इसको चूल्हा में डाल दो, मैं तो कभी नहीं सूखूंगा, वो सोचता मैं तो जवान ही रहूंगा। कैसे तुम नहीं सूखोगे जब तुम पर भी हवा लग रही है और सूर्य के प्रकाश भी लग रहा है, तो तुम नहीं सूखोगे जब स्वभाव है इस शरीर का कि बूढ़ा होगा ही, तो होना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। और देखा जाता है कि बाद में वो गोबर सूख जाता है और उसको भी चूल्हे में झोंका जाता है ना। जो बूढ़े हैं वो बूढ़े ही थोड़े जन्म लिए थे, एक दिन बच्चा ही बूढ़ा हुआ ना, इस स्वभाव है चल रहा है धारावाहिक। तो किसी भी दशा में हो व्यक्ति, उसको तुरंत सावधान होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति कर लेनी है। और भगवान की भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है भगवान का नाम गाना और जपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये षडात्मा की व्याख्या की जा रही है, शरीर का छह स्वभाव है, षड माने छ। एक तो है कि शरीर जन्म लेता है तो फिर बढ़ता है, जन्म लेना पहला विकार है, बढ़ना दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन विकार, और तीसरा तिष्ठति, कुछ दिन तक रहता है, और भी परिणाम तो कुछ परिणाम पैदा करता है, कुछ बाय प्रोडक्ट कुछ शरीर पैदा करता है, कुछ पैदा करता रहता है ना। मुख्य पैदा है कि कोई संतान होना, ये पैदा करता है, और नहीं तो मल मूत्र तो रोज पैदा करता ही रहता है, ये भी एक पैदा करना ही हुआ, नख पैदा करना, केश पैदा करना, ये सब। और इसके बाद ये कौन विकार था, चौथा था ना, पांचवा है अपक्षय, अपक्षीयत, निश्चित शरीर का पचकना धीरे धीरे। आदमी ये कहता है कि हाँ शुगर है इसलिए शरीर पतला हो रहा है, ब्लड प्रेशर, ये स्वभाव है शरीर का, एक दिन उसको खिसकना ही है धीरे धीरे। जैसे जैसे शरीर खिसकेगा धीरे धीरे बल बढ़े, बल घटेगा और अंत में जहां तहां गिरेगा, चाहे बाथरूम में गिरे चाहे चंपाकल पर गिरे, पतत अवश्य परिणामी पेशन शरीर गिरेगा। गिरता है प्रथम बार तो आदमी लेकर के हॉस्पिटल भागता है, क्या हो गया कैसे गिर गया, अरे गिरना स्वभाव है, गिरेगा धीरे धीरे और गिरते गिरते एक दिन ऐसा गिरेगा कि अब टोटल गिर गया खत्म, और इसके बाद अब दूसरे लोग उठा करके ले। ये हम लोगों के साथ लगा है, इसलिए आत्मविज्ञान है यह जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। परंतु इन सबके कारण, सारी सृष्टि के, भोजन के, सबके कारण भगवान है, ऐसे प्रभु की हम शरण ले रहे हैं। उस वाक्य से इसका तात्पर्य, प्रथम श्लोक से इसका संबंध, हम आपकी शरण ले रहे हैं। षडात्मा सप्तत्व, और इस संसार वृक्ष की, अगर वृक्ष के रूप में देख रहे कि सात छाले हैं, त्वक वृक्ष में सात छाल को क्या कहेंगे, कवर, तो प्रथम छाल क्या है इसकी, त्वक चमड़ा, त्वक प्रथम छाल ये है, और दूसरी छाल है मांस। इसकी छाल हूबहू छाल नहीं समझना चाहिए, वृक्ष ही नहीं है ऐसे। तो त्वक है साथ चमड़ा, मांस और मेद। मांस में जो चर्बी रहती है उसको मेद कहते हैं, उसमें रहता है तेल जैसा कुछ। तो पहला चमड़ा त्वक, इसके बाद मांस, इसके बाद मेद, और मेद के बाद स्नायु, स्नायु मतलब नाड़ी, कहीं रस्सी जैसा भगवान बांध करके शरीर बनाया जोड़कर, रक्त वाहिनी नलियां, रक्त का जो वहन करती है वो उसको कहते हैं नाड़ी। और इसके बाद है हड्डी, अस्थि, जिस पर कि पूरा ढांचा खड़ा है, जैसे घर में खंभा आदि लगाते हैं और ऐसे तिरछा भी, तो ऐसे हड्डियों के बल पर शरीर खड़ा है। और शरीर खड़ा है कई जगह, ये ज्वाइंट है। एक भक्त कहते हैं कि इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, ये शरीर ऐसा है कि सैकड़ों जगह बांधा गया है तब टीका है, और मृत्यु के समय सब बिखर जाएंगे। जैसे ऐसे मेरी उंगली हिल रही है, यहां से हिल रहा है, तो यहां 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 सब जोड़ है, बहुत कमजोर शरीर है, खुलना स्वाभाविक है हड्डियों का, ये जुड़ा हुआ है, यही बनावटी है। जो भी है जोड़ करके ढांचा खड़ा करके चमड़ा से मोह दिया है ब्रह्मा जी ने। तो अस्थि, अस्थि में जो चर्बी रहती है उसको मज्जा कहते हैं। अस्थि के संधियों में और खास करके कहीं कहीं रहती है चर्बी, तो उसको मज्जा कहते हैं। और नालियों में रक्त है, रक्त भी एक त्वक हुआ। अब कौन बाकी रहे? हाँ हाँ, धातु बीज। तो इस शरीर में सात लेयर्स हैं, सात। ऐसा नहीं कि ये कहीं वस्तु से फिट बन गया हो, इसमें कोई जोड़ नहीं होना चाहिए, ये तो सैकड़ों जगह जोड़ा गया है। सतसंधि जर्जरम पतत अवश्यम, यह निश्चित गिरेगा, और परिणामी पेशलम, इसकी सुंदरता आदि सब चली जाने वाली है, परिणाम होता है। निरामयम कृष्ण किमौ सदैह क्लिश शशिमूढ़ दुर्मते, अरे मूर्ख ये दवा खा खा करके क्यों अपने को जला रहे हो, सबसे बेस्ट अमृत पियो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कृष्ण रसायनम पीबा, कृष्ण रसायन पियो। ये पद बहुत प्रसिद्ध है। तो सात इसके लेयर्स हैं, कवर हैं, और अष्ट बिटपो आठ इसके ब्रांच हैं, शाखा प्रशाखा आदि से। तो भूमि रापो नलो वायु खम ये पांच हुए, भूमि जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार, ये इसकी आठ शाखाएं हैं। बिटपा सब प्राकृत है, नवाक्ष और इसमें नौ अक्ष हैं, इस वृक्ष में नौ छेद हैं, खोंढर है। ऐसा नहीं कि ठोस बना दिया गया है, इसमें नौ छिद्र हैं, जैसे किसी पेड़ में छिद्र होते हैं, उसको कोटर या खोंढर कहते हैं। तो इस तरह से इस शरीर में खोंढर है, कोटर है, छिद्र नौ, दो आगे एक मुख, दो आंख एक मुख और दो नासिका, पांच तो बिल्कुल सामने छेद है ना इस शरीर में, मुख नाक और आंख ये पांच हुए, और दो साइड में है। पूरब की तरफ खड़ा होइए तो एक नॉर्थ में है पड़ेगा, एक साउथ में पड़ेगा, दो छेद और दो नीचे हैं, नौ हुए ना, नवाक्ष अक्ष माने छिद्र, नौ अक्ष, दशत छदी और इसमें दस पत्ते हैं, छदी माने छादने छाने वाला पत्ता। इस शरीर में सब जगह जो वस्तु है उसको कहेंगे वृक्ष में, ऊपर सब जगह पत्ता छाया रहता है, उसके बल से टिकता है वृक्ष। तो यह शरीर है, दस पत्तों से छाया हुआ है, दस प्रकार के प्राण हैं, हवा इस शरीर में, दस प्रकार की वायु चलती है इस शरीर में, जैसे हम लोग प्राण कहते हैं, प्राण जिसको लेते हैं, और अपान, अपान का अर्थ होता है जो नीचे के अंग से वायु निकलता है, उसको अपान कहते हैं। इस वायु ही मिलकर के इस शरीर को चला रहा है, और जब वायु बिगड़ जाता है तो उसको बात रोग कहते हैं, बात माने हवा। हवा को बात कहते हैं, और बात का अर्थ शब्द भी होता है। एक बार एक व्यक्ति अपने मंदिर में नहीं आ रहे थे, किसी बात से दुख लग गया था उनको, मंदिर में नहीं आ रहे थे, तो मैं भेजा एक व्यक्ति को कि जाओ उनको बुला लाओ, वो तो नहीं आए। तो मैं पूछा क्या बात है, क्यों नहीं आए, तो कहा कि बात रोग है। बात रोग, मैं तो समझ गया कि उनको बात से कुछ दुख है, कोई वचन बोल दिया गया है उसका दुख है। तो वो कविता में कहा कि बात रोग है, अच्छा तो बात ही उसकी दवा है, अगर बात रोग है तो कोई अनुकूल बात बोले ठीक हो जाएगी। लेकिन बात का असली अर्थ हवा होता है, कफ बात पित्त जो शरीर में प्रयोग किया जाता है, ये तीन धातुएं हैं, और वैद्य लोग तो बहुत प्रसिद्ध इस शब्द को किए हैं, कफ पित्त बात बात, और इनका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो रोग होता है। तो हम लोगों के शरीर में दस प्रकार का वायु है, सारे शरीर को यही चला रहा है, इसी के बल से शरीर चल रहा है। आपने देखा होगा वायुवान उड़ता है, चाहे रेल चलती है, इसको भी हवा चला रही है, और हवा ही ब्रेक डाल देती है, चल नहीं पाती है ना, ये सिद्धांत है ना सर, वायुवान चलता है तो उसको भी हवा ही उड़ाती है। इतना फोर्स से वे हवा बनाते हैं पृथ्वी पर कि हवा के टकराने से वो फैल देता है विमान को आगे, इस तरह उड़ उड़ता है। हमारे शरीर में भी हवा ही मुख्य है, प्राण अपान उद्दान व्यान समान और क्रिकलास, नाग 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 क्रिकलास और कौन कौन है, कूर्म देवदत्त और धनंजय नाम है, और कहां के वायु का नाम है ये मुझे पता नहीं है। कहां जैसे ब्लड को जो संचारित करता है नस में इधर से उधर, उसका क्या नाम है ये हमको पता नहीं। उसमें से एक वायु वो है, और एक वायु जो आंखों के पलक को उठाता है वो भी वायु है, और जम्हाई आती है तो मुंह खुल जाता है वो भी एक अलग वायु, ये व्यान। और शरीर के अलग अलग अंगों में जो फेफड़े में काम करता है उसका अलग नाम है, तो 10 प्रकार का वायु है। जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ेगा इस सारा वायु का संचरण बंद, खून का दौरा भी बंद। और अपान जो है जो आंतों में मल को फैलता है बाहर करता है, और वही नहीं कुछ कर पाएगा तो आंते क्या करेंगे, पेट सब जाम होकर के आदमी मर जाता। अच्छा, इस वृक्ष पर 2 खग रहते हैं पक्षी, इस शरीर में 2 पक्षी, एक स्थान पर बैठने के कारण उनको समान रूप से कहा गया, लेकिन पक्षियों में बड़ा भेद है। 2 हैं लेकिन एक सर्वज्ञ है और विरक्त है, संसार के भोगों को नहीं भोगता है, फल को नहीं खाता है, और दूसरा अज्ञ है जो फल खाता है, खट्टा मीठा पीता और रोता है, हाय हाय सुख मिल गया दुख मिल गया। तो इस शरीर पर 2 पक्षी हैं, एक परमात्मा और आत्मा जीव। तो आत्मा इस संसार के फल को खाता है भोगता है, किसी स्त्री को देखा तो उस पर लुब्ध हो गया, धन को देखा ये देखा ये देखा, यही दूसरा जो पक्षी है इस पर कोई ध्यान नहीं देता, मैं तो अपने स्वरूप के आनंद में मग्न रहता। इस पक्षी को ये सिखाना है कि तुम उस शाखा पर बैठे हुए अपने मित्र पक्षी की तरफ आंख करो, दुनिया को भोगने का प्रयास मत करो। कहे प्रभु, आप इस संसार वृक्ष के आधार हैं, आप ही सब कुछ हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं, हम लोग आपके सेवक हैं, हम आपकी शरण में हैं। ये सिद्धांत, जब ब्रह्मा जी शिव जी भगवान की शरण ले रहे हैं तो मनुष्य कौन नहीं शरण लेगा, जो तो सब तरह से मृत्यु से घिरा हुआ है, जहां जाइए वहां मृत्यु है, तो सब और मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ क्यों नहीं भगवान का भजन करेगा, जिनका भजन ब्रह्मा जी शिव जी जो अमर पति हैं नहीं मरने वाले वे करते, क्यों नहीं मनुष्य को करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में ये सब सिद्धांत दिए गए हैं। कथा कहने के लिए तो यह भी कहा जा सकता है कि देवता लोग आए गर्भ स्तुति करके चले गए, कथा इसे भी पूरी ही मानी जाएगी दूसरे अध्याय की। और एक फैशन में किया जा सकता है 7 दिन में शुरू से लेकर के अंत तक कथा पूरी की जा सकती है, तो केवल फैशन से पूरा करने का ही उद्देश्य, सुनने का उद्देश्य नहीं रहता है। एक मान्यता होती कि हमको भागवत कराना है, तो इसलिए कोई पंडित जी को बुला करके और बचवा दिया, ठीक है पूरा हो गया, सुन लिए, हमारे पूर्वज तर गए हम भी तर गए। केवल भावना होती है, कई फैशन चलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा है, आज तक ये पता नहीं चला कि सत्यनारायण कथा क्या है, उस केवल सत्यनारायण कथा का महात्म्य कहा जाता है, ये व्यक्ति सत्यनारायण कथा किया सुना तो उसको ये फल मिला, नहीं सुना तो ये फल मिला। कथा क्या है, पता नहीं चलता है, पर फिर भी लोग सुनते रहते केवल महात्म्य। और विशेष करके स्त्रियां सुनती हैं, पुरुषों को इतना कहां फुर्सत है, काम धंधा के लिए जाना होता है। तो पूर्णिमा को कोई ब्राह्मण आए, पूर्णिमा को, पूर्णमासी को कथा होती है, तो पंडित जी को भी एक ही दिन में 6-7 जगह कथा कहनी होती है, और सुनने वाले पुरुष रहते नहीं है, माता जी लोग रहती हैं, वो भी बूढ़ी माता जी, तो सुनती है। पंडित जी संस्कृत में धारावाहिक उच्चारण करते जाते हैं, धारावाहिक, जिनको हिंदी का भी ज्ञान नहीं वो उनको संस्कृत सुनाया जाता है, धारावाहिक बोलते जाते हैं। और सब स्त्रियां सोती हैं, देखा हूं मैं अपने गांव में ही, अपनी मां को भी देखा, सोना देती। कब नींद टूटती है, जब शंख वादन होता है अध्याय के अंत में, सोती रहती है, सोती रहती है। तो बोलते हैं कि इति श्री रेवा खंडे कुछ बोलकर, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसके बाद शंख बजाते हैं, तब सबकी नींद टूट जाती। तो वो वहां एक गट्टी रखी रहती, गीटी रखी रहती है, या लकड़ी, उससे लकीर खींचती है, एक अध्याय पूरा हुआ गिनने के लिए, एक अध्याय पूरा हो गया, लकीर खींचती है, पंडित जी फिर चालू करते हैं, और फिर नींद चालू, ऐसे बिल्कुल सोती रहती है, झपाती रहती है। पंडित जी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सोने या ना सोने उनको मतलब नहीं, उनको तो करना है, और उनको आखिर कुछ तो दक्षिणा मिलेगी ही। तो फिर चालू करते हैं, फिर सोना, फिर वही वृंदावन बिहारी लाल की जय और शंख वादन, तो फिर नींद टूटती है, फिर खींचती है। जब 5 लकीर खींच देती है, इसके बाद अब नींद खत्म, कथा खत्म हो गई। वो सूरत दास बताया करता था कैसे पंडित जी शंख बजाते हैं, जो ये कहा था कि शेष नाग थक गए हैं, अब पटकने वाले हैं पृथ्वी, तो वही हमसे बता रहा था कि उसकी दादी कैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती है। और शंख की आवाज भी करता है मुख से। और इसके बाद कथा खत्म हो गई, अब नींद खुल गई, तो पंडित जी अब तैयार करते हैं चरणामृत। चरणामृत मतलब कच्चा दूध है, कई घंटे का रखा हुआ है, उसमें थोड़ा चीनी मिला दिए, हो गया चरणामृत। भगवान को अर्पण किया गया कि नहीं, तो कम से कम भगवान का फोटो रखा जाए तब ना अर्पण होगा, तो कोई जरूरी नहीं है, वो कथा बात से हो गया। चरणामृत और कुछ आटा भूंजा हुआ मिल गया। अब वो मानती हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया, कथा सुनी हो, क्या सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, वो कुछ नहीं, महात्म्य भी नहीं सुनी, कुछ ही नहीं। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम ऐसे नहीं सुना जाता है, वो ध्यान से यहां 2-3 श्लोक की मैं कथा कहा, और आज का सवेरे का सीटिंग पूरा हुआ। तो प्रभुपाद जी तो ये कहीं श्लोक का कहते थे, लेकिन समझाते थे कि इसमें है क्या वास्तव में। संसार वृक्ष का वर्णन एक वाक्य में भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों को एक ज्ञान दिया जा रहा है भगवान वेदव्यास देव के द्वारा, मनुष्य जाति के लिए, ये हित करने के लिए। इसीलिए इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जब सिद्धांत बताया जाए तो इसकी बहुत जरूरत है। हरे कृष्ण।